डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट, नीतिवचन 22:06 एक बच्चे को प्रशिक्षित करें। विड ग्रेस थियोलॉजिकल जर्नल 9/1/1988-3-19 2024 टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हैं जो नीतिवचन 22:06 पर अपनी शिक्षा देते हुए कहते हैं, एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह उसे करना चाहिए। नीतिवचन 22:06 की हमारी प्रस्तुतियों में आपका स्वागत है। यह कविता बहुत प्रसिद्ध है और नीतिवचन की पुस्तक से एक बच्चे को उस तरीके से प्रशिक्षित करें जिस तरह उसे जाना चाहिए और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे अलग नहीं होगा। इसलिए हम आज इस श्लोक का अन्वेषण करना चाहते हैं और इसकी क्षमता और इसकी संभावित समस्याओं को भी देखना चाहते हैं। इस कविता का उपयोग वर्षों से प्रोत्साहन और माता पिता द्वारा बच्चे के शीघ्र पालन पोषण के महत्व और इस तरह की चीजों पर जोर देने के लिए किया जाता रहा है। तो यह एक प्रोत्साहन है, जब बच्चा छोटा हो तो उसे प्रशिक्षित करें और जब वह बूढ़ा हो जाए तो वह इससे पीछे नहीं हटेगा। और माता पिता द्वारा बचपन में पालन पोषण में संलग्न होने का प्रोत्साहन कई लोगों को आशा देता है। आप अपने बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से करते हैं और आपका बच्चा सही बनता है और परिणाम की गारंटी है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि आप उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित करें और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे अलग नहीं होगा। और इसलिए यह कई माता पिता के लिए आशा प्रदान करता है जो हमारी वर्तमान संस्कृति की अराजकता के बीच में है। आशा यह भी है कि यदि बच्चा भटक जाता है तो माता पिता बच्चे को सर्वोत्तम तरीके से प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि हाई स्कूल में वे कुछ गलत बच्चों और इस तरह की चीजों के साथ घूमना शुरू कर देते हैं, वे भटक जाते हैं और अंत में वे वापस आएंगे। और इसलिए यह एक तरह से पुराने उड़ाऊ व्यक्ति की वापसी है। एक बच्चे को उस तरीके से प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे जाना चाहिए। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे अलग नहीं होगा, वह वापस आ जाएगा। और इसलिए यह उस परिप्रेक्ष्य से भी आशा प्रदान करता है। हालांकि एक निश्चित चिंता है जो इस श्लोक में अंतर्निहित है कि यदि आपके पास एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करने की संभावना है जिस तरह से उसे जाना चाहिए और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह इससे नहीं हटेगा, फिर कुछ चिंता भी है, अगर आपने यह गलत किया तो क्या होगा, यदि आप गड़बड़ कर दें तो क्या होगा। हो सकता है कि आप बच्चे को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा रहे हों ताकि जब वह बूढ़ा हो जाए तो सीधे जाने के बजाय भटक जाए, और इसलिए वास्तव में आप इससे बच्चे को चोट भी पहुंचा सकते हैं। और अब अनिश्चितता, यह क्या है? और जब मैं एक युवा माता पिता था और मेरे 4 बच्चे हैं, अब वे वयस्क हैं। सवाल यह है कि इसे सही तरीके से करने का क्या मतलब है, जिस तरह से उसे जाना चाहिए? इसका वास्तव में क्या मतलब है? हमारी संस्कृति और काम करने की बाधाओं और परिवार के साथ आने वाली अन्य स्थितियों को देखते हुए यह जानना बहुत जटिल हो जाता है कि क्या करना सही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सही स्कूल कौन से हैं? बच्चे से करवाने के लिए सही प्रकार की गतिविधियां क्या हैं? जीवन की आपाधापी के बीच हम अपना परिवार कैसे चलाएं? तो इसे सही तरीके से करना जिस तरह से किया जाना चाहिए, इसकी अनिश्चितता है। एक और कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, बच्चा अच्छा हुआ और इसलिए आपको एक अच्छा बच्चा मिला है। और इसलिए यह साबित होता है कि माता पिता अच्छे थे। क्या वह हमेशा काम करता है? एक अच्छा बच्चा हमेशा एक अच्छा माता पिता साबित होता है। क्या यह हमेशा सही होता है? और फिर एक बुरे बच्चे के बारे में क्या? हड्डी वाली उंगली आप पर बुरे माता पिता होने का आरोप लगाने के लिए बाहर आती है। बच्चा भटक गया, तुमने उसे ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया होगा, क्योंकि यदि तूने उसे उस मार्ग की शिक्षा दी जिसमें उसे चलना चाहिए तो वह बूढ़ा होने पर भी उससे अलग न होगा। यदि वह इससे हटता है तो उसके प्रारंभिक बचपन के प्रशिक्षण में कोई समस्या रही होगी। क्या वह भी हमेशा सही होता है? तो वैसे भी हम इनमें से कुछ चीजों का पता लगाना चाहते हैं। यह है इस श्लोक का वर्तमान प्रयोग और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हम में से बहुत से लोग उड़ाऊ बच्चे का दर्द जानते हैं, और इसलिए उदाहरण के लिए आपको धर्म ग्रंथ में उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैथ्यू 23:37, जिसमें ईश्वर स्वयं उस दर्द में शामिल थे। मत्ती 23:37 यह कहता है, हे यरूशलेम, यरूशलेम वह नगर जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो उसके पास भेजे जाते हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार यह परमेश्वर बोल रहा है, मैंने चाहा होता, या यीशु बोल रहा होता, मैं होता, मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे इकट्ठा करता जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, और आप इच्छुक नहीं थे। और उस पीड़ा और विलाप को देखकर, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैं तुझे भलाई के लिए इकट्ठा कर लेता, परंतु तेरे पास उसका कुछ भाग न होता। होशे 11:11 और है, जब इज़राइल बच्चा था मैं उससे प्यार करता था, और मैंने मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया, उन्हें जितना बुलाया गया वे उतना ही चले गए, वे बाल देवताओं के लिए बलि चढ़ाते रहे और मूर्तों के आगे होमबलि करते रहे। तो ये भी भगवान बोल रहे हैं, और इसलिए आप उस दर्द को देखते हैं जो एक माता पिता के साथ आता है, जो वे सबसे अच्छा कर सकते थे या कोशिश करते थे कि वे कर सकते थे, या यह जानते हुए कि उन्होंने गड़बड़ की है, और फिर बच्चे के भटकने से परेशान रहते हैं। और आप यीशु को यरूशलेम और अपने बच्चों को मुर्गियों के रूप में इकट्ठा करने की इच्छा पर विलाप करते हुए भी देखते हैं। और तब होशे 11 परमेश्वर इसराइल से कह रहा था कि उसने उनको अपने पास इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उसके लड़के बालों और उसके पुत्रा भटक गए थे। और फिर नीतिवचन 10:1 उदाहरण के लिए कहता है कि बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए आनंद लाता है, परंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुख का कारण बनता है। और इसलिए आपको यह तथ्य मिलता है कि बच्चा माता पिता के लिए अत्यधिक भावनात्मक खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन दूसरी ओर नुकसान की भी भारी संभावना है, और बहुत से माता पिता ने ऐसा महसूस किया है। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करें, और हम बस एक प्रकार का परिचय देंगे और फिर हम प्रत्येक शब्द पर विचार करेंगे। प्रशिक्षित करने का क्या मतलब है? आपको जिस रास्ते पर जाना चाहिए उसका क्या मतलब है? और फिर हम इसे और चीजों को एक साथ वापस लाएंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे लगता है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि एक कहावत कोई वादा नहीं है, और यह वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। एक कहावत कोई वादा नहीं है, इसे विधा कहा जाता है। यह एक लौकिक शैली है, इसका संबंध कहावतों से है। कहावतें सामान्य साहित्य की तरह नहीं होती, ये पूर्ण सत्य नहीं है। आप कहते हैं ठीक है, यह बाइबल में है, यह सच होना ही है। हाँ, यह सच है, लेकिन यह लौकिक रूप से सच है, और आपको ऐसा ही होना है। आइए आपको कुछ उदाहरण देते हैं। नीतिवचन अध्याय 10:4 में यह कहा गया है, सुस्त हाथ गरीबी का कारण बनता है, लेकिन मेहनती का हाथ अमीर बना देता है। क्या यह सदैव सत्य है? ढीला हाथ दरिद्रता का कारण बनता है। क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो बड़े होकर आलसी थे और फिर भी अमीर हैं? उनके माता पिता अमीर थे, उन्होंने उन्हें पैसे या कुछ और दिया, या वे किसी ऐसी चीज में पड़ गए जो घटित हुई अपने स्वयं के कार्यों या अपने स्वयं के परिश्रम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे इस तरह उसमें फंस गए। या परिश्रमी का हाथ धनवान बनाता है। क्या यह सदैव सत्य है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं और अमीर नहीं बन पा रहे हैं, और इनमें से कई लोग, विशेष रूप से ये छोटे बच्चे और सहस्राब्दी और जेन्जस और इस तरह की चीजें, वे अपनी पूंछ से काम ले रहे हैं, लेकिन जब वे घर पाने के बारे में सोचते हैं और वे घर और घर खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, कीमतें अब क्या हैं? $4,00,000 से अधिक, और इन बच्चों पर कॉलेज का कर्ज है। वे यह कैसे करते हैं? लेकिन वे अपनी पूंछ से काम ले रहे हैं। सो परंतु परिश्रमी का हाथ धनवान बनाता है। खैर, सचमुच हर समय ठीक है। क्या आपने मेहनती लोग देखे हैं? मेरे पिता बेहद मेहनती थे। उन्होंने कई वर्षों तक एक कारखाने में सभी प्रकार के डबल्स का काम किया और मूंगफली बनाई। ठीक है। और अब ओलिवर एंथोनी का एक गाना भी आया है, रिच मैन नॉर्थ ऑफ रिचमंड, और वह शिकायत कर रहा है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है और पैसे का कोई मूल्य नहीं है। और उम्मा, वास्तव में मेरे पिता ने अपने जीवन के अधिकांश समय तक ऐसा ही किया। वह कभी अमीर आदमी नहीं बन सका, लेकिन उसने कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने जीवन में मेरी तुलना में कहीं अधिक मेहनत की। तो सावधान रहो, कहावत कोई वादा नहीं है, इतिहास कानून नहीं है, और मैं यहां सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्मग्रंथ की विभिन्न शैलियों को आपको कैसे अलग अलग तरीके से समझना होगा, और वे सत्य पर अलग ढंग से आते हैं। वे सत्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह एक निश्चित साहित्यिक शैली के भीतर का सत्य है, और आपको यह समझना होगा। तो उदाहरण के लिए, उम्मा इतिहास कानून नहीं है। तो आपको ऐतिहासिक पुस्तकों में क्या मिलता है? इब्राहिम अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोलता है। वह कहते हैं, सारा खूबसूरत महिला, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, क्योंकि वह फिरौन या बाद में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक द्वारा मारा जाना नहीं चाहता, और इसलिए वह कहता है, अरे कहो तुम मेरी बहन हो या, इसलिए वे इसे मुझ पर नहीं निकालते, और इसलिए वह मेरी बहन है, और वह दो बार ऐसे ही झूठ बोलता है। और वास्तव में इसहाक, दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी पत्नी रेबेका के साथ भी ऐसा ही करता है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि वे इतिहास में हैं। क्या ये सच हैं? खैर, वे ऐतिहासिक रूप से सच हैं कि वे वास्तव में घटित हुए थे। हालांकि क्या हमें यही करना चाहिए? हमारी बहन के बारे में झूठ बोलो, क्योंकि वह हमारी बहन है, वह आपकी पत्नी है, और आप उसे अपनी बहन वगैरह कहते हैं। ठीक है, नहीं, वह इतिहास है। यह क्या हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें काम इसी तरह करना चाहिए या करना चाहिए। दूसरा डेविड है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हम डेविड की तरह बनना चाहते हैं, है ना? हाँ, मुझे बतशेबा के बारे में बताओ और मुझे उरियाह के बारे में बताओ। उरियाह वापस आता है। डेविड उसे नशे में धुत करने की कोशिश करता है, ताकि वह इस तथ्य को छुपा सके कि उसके बतशेबा के साथ संबंध थे। वह उरियाह को यर्दन नदी के पार योआब के पास वापस भेजता है और कहता है, अरे उन्हें सामने से खड़ा करो और पीछे खींचकर सामान भर दो, और योआब को इस विषय का ध्यान रखने दो। योआब उन्हें आगे रखता है। वे पीछे खींच लेते हैं। उरिय्याह मारा गया। योआब कहता है, हे दाऊद, इसका सब ध्यान रखा गया है। जब तक नातान भविष्यवक्ता आकर न कहे, हे दाऊद, तू ही मनुष्य है, आपने यह किया। और तब नाथन भविष्यवक्ता को परमेश्वर द्वारा दाऊद का सामना करने के लिए भेजा जाता है। डेविड ने जो किया वह गलत था, सचमुच गलत था, और उन्होंने इसके लिए कई तरह से भुगतान किया। और इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि डेविड ने तब किया जब वह भगवान के दिल के अनुसार एक व्यक्ति था। उसने जो किया वह वास्तव में गलत था। तो इतिहास का मतलब कानून नहीं है। दूसरे शब्दों में, हम इतिहास का अनुसरण नहीं करते हैं और कहते हैं, हाँ, इतिहास सत्य है, उसने जो किया वही हुआ, और यह सच है। हालांकि यह हमारे लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए। तो इतिहास, आपको इतिहास और कानून के बीच के अंतर को समझना होगा। वे दो अलग अलग शैलियां और चीजें हैं। कानून के बारे में क्या? पहला बच्चा। निर्गमन अध्याय 22 श्लोक 29 में परमेश्वर कहते हैं कि पहिलौठा बच्चा उनका है। क्या यह आज पर लागू होता है? हमारी पहली संतान रिबका थी और वह फिर परमेश्वर से पैदा हुई। आप मेरे दूसरे बेटे चरी ज्येष्ठ पुत्र को देख रहे हैं, और इसलिए आप कहते हैं, क्या हम आज भी ऐसा करते हैं? और उत्तर है, नहीं। वह तब एक कानून था, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका प्रभाव हो। यह उस समय इज़राइल को दिया गया एक कानून था, और इसलिए भले ही यह सच है, सभी कानून इस तरह से पालन करने के लिए नहीं बने हैं। और वास्तव में आज लोग झींगा मछली खाते हैं। आपको इसके बारे में कानून से सवाल पूछना होगा। भविष्यवाणी के बारे में क्या? तुम कहते हो, अच्छा, भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर का वचन कहा, अत उन्होंने जो कहा वह सत्य है, और यह सही है, उन्होंने जो कहा वह सच है। लेकिन यशायाह स्पष्ट रूप से यशायाह अध्याय 20 श्लोक 3 से था। यशाया को 3 साल तक नग्न घूमने के लिए कहा गया था। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और भगवान ने मुझे बुलाया और मैं हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, ईश्वर ने उस नबी को एक विशेष समय के लिए बुलाया। उसके पास आहाज या इसराइल के राजाओं में से एक को देने के लिए एक विशेष संदेश था, और इसलिए यह उस विशेष स्थिति के लिए एक विशेष संदेश था। क्या यह यहोवा यों कहता है? हाँ, उस राजा को डोठा, उसे वाचा में वापस बुलाना। हाँ, लेकिन उनका संदेश भी गंदे कपड़ों में घूमने का संकेत था। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें गंदे कपड़ों में घूमना चाहिए। ठीक है, इसलिए भविष्यवक्ता ने जो किया वह आवश्यक रूप से हर समय के लिए आदर्श नहीं था। तो आपको कहना होगा कि यह एक भविष्यवाणी है। इसका मतलब मानक या कानून या ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यह समझना होगा कि साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से सत्य कैसे आगे बढ़ता है। ज्ञान साहित्य कानून नहीं है। ज्ञान साहित्य कानून नहीं है। सभोपदेशक 1:17 यह कहता है, इसलिए मुझे जीवन से नफरत है, क्योंकि सूर्य के नीचे जो कुछ किया जाता है वह मेरे लिए दुखद है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है और वायु के पीछे प्रयत्न करना है। जो मूर्ख के साथ होता है वही मेरे साथ भी होगा। फिर मैं इतना बुद्धिमान क्यों हो गया हूं? और मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ बात है। घमंड, घमंड, सब घमंड है। क्या हमें इसे सार्वभौमिक बनाना चाहिए? क्या यह सदैव सत्य है? और अब यह एक्लेसियस्टेस का यह व्यक्ति क्योहेलेट इससे संघर्ष कर रहा है, लेकिन यह ज्ञान साहित्य है। यह विचार करने के लिए विचारोत्तेजक के लिए है। जरूरी नहीं कि यह सार्वभौमिक पूर्ण सत्य का बयान हो। तो आपको यह समझना होगा कि यह ज्ञान साहित्य है, और फिर आपको इसके बारे में सोचना होगा। सर्वनाशकारी साहित्य आप कहते हैं, क्या सर्वनाशकारी साहित्य सत्य है? हाँ, यह सच है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सर्वनाशकारी साहित्य है। इसलिए यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं और आपके पास ये सभी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं और इस तरह की चीजें हैं, तो आप चीजों को समझने जा रहे हैं। यह सर्वनाशकारी साहित्य है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि ऐसा होता है, या इसे कानून के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, और इसे ज्ञान साहित्य या उसके जैसा कुछ नहीं माना जाना चाहिए। यह सर्वनाशकारी साहित्य है, और इसलिए दानियल अध्याय 7, उदाहरण के लिए दानियल 7, इन चार जानवरों को पानी और जमीन और उस जैसी चीजों से बाहर आने का सपना देखता है, और ये चार जानवर बाहर जा रहे हैं, और आप पूछते हैं, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? क्या वह इतिहास है? और आप कहते हैं, ठीक है, यह सर्वनाश है, और इसलिए जानवर और वे नबूकदनेस्सर और चीजों की यह बड़ी मूर्ति बनाते हैं और खड़े होते हैं, यह किसी चीज का प्रतीक है, और इसलिए आपको यह समझना होगा कि यह सर्वनाशकारी साहित्य है। तो यह ऐसा कहता है, लेकिन यह यहां इसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए एक निश्चित अर्थ में यह दुनिया के भविष्य के सर्वनाशकारी अंत के साथ एक प्रकार का रूपक है, और अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रकार की अभिव्यक्ति है, और इसे समझना भी बहुत मुश्किल है। यह स्पष्ट नहीं है। इनमें से कुछ छवियों के बारे में आपको सोचना होगा, और आप जानते हैं, उन पर काम करना होगा। यह सर्वनाशी है, इसका मतलब इतिहास होना नहीं है, इसका मतलब कानून नहीं है। सर और चीजों की यह बड़ी मूर्ति बनाते हैं और खड़े होते हैं, यह किसी चीज का प्रतीक है, और इसलिए आपको यह समझना होगा कि यह सर्वनाशकारी साहित्य है। इसका मतलब कविता होना नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि कहावत कोई वादा नहीं है। इसलिए जब यह कहा गया है, तो बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे करना चाहिए, और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे नहीं हटेगा। ये एक कहावत है, कोई वादा नहीं। और आपको साहित्यिक विधा के उस अंतर को समझना होगा। उदाहरण के लिए, एक बुद्धिमान पुत्र एक सुखी पिता बनता है, एक मूर्ख पुत्र अपनी माँ के लिए दुखदायी होता है। नीतिवचन 10:01। क्या यह सदैव सत्य है? एक बुद्धिमान पुत्र एक खुशहाल पिता बनता है। क्या यह संभव है कि बेटा बुद्धिमान है, लेकिन पिता अपना घरेलू काम कर रहा है, और बुद्धिमान पुत्र के परिणामस्वरूप पिता उस पर खुश नहीं होता, क्योंकि पिता के चले जाने पर बहुत संभव है मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुखदायी होता है? हाँ, ऐसा सामान्यतः होता है। एक माँ को एक गलत बच्चे और उस जैसी चीजों, एक उड़ाऊ बच्चे को जन्म देने का दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? नहीं, कभी कभी माँ इसमें शामिल होती है, ठीक है, और वह मूर्ख भी है, और इसलिए उसे इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। नीतिवचन 10:04, जिसका हमने पहले उल्लेख किया है, सुस्त हाथ गरीबी का कारण बनता है। क्या यह सदैव सत्य है? मेरा बेटा यहाँ बोस्टन में कुछ लोगों के साथ काम करता था, और एक आदमी हर समय मालिकों के साथ गोल्फ खेलता रहता है, और वह अपना काम नहीं कर रहा है। जब पदोन्नति पाने का समय आता है, तो मेरे बेटे, मैंने उसे प्रशिक्षित करने की कोशिश की, तुम कड़ी मेहनत करो और इसी तरह तुम आगे बढ़ोगे। आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। आप समय पर आते हैं और अपना काम अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करते हैं। क्या इससे हमेशा पदोन्नति होती है? नहीं, यह आदमी जो बाहर है, देर से आता है, बाहर जाता है और पूरे दिन गोल्फ खेलता है, अनुमान लगाओ जब पदोन्नति का समय आता है, तेजी से उसे पदोन्नति मिल जाती है। आप कहते हैं, ठीक है, यह सही नहीं है। अच्छा, अरे, यह तो ऐसा ही है। वैसे भी ढीला हाथ गरीबी का कारण बनता है, यह जरूरी नहीं है, लेकिन मेहनती का हाथ अमीर बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पिता मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे मेहनती लोगों में से एक थे। उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें वास्तव में कभी धन प्राप्त नहीं हुआ। मैंने काम किया है, यह तुलनीय भी नहीं है, क्योंकि मैं जीवन भर प्रोफेसर रहा हूँ। मेरे पिता को वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जबकि प्रोफेसर होने और इस तरह की चीजों के मामले में मैंने वह काम किया है जिसका मैंने अपने पूरे जीवन में आनंद लिया है। अब मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन यह अकादमिक काम है। यह उनके द्वारा किए गए शारीरिक श्रम से बहुत अलग है। दुष्टों का भय उस पर आ पड़ता है, धर्मी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। नीतिवचन 10:24। दुष्टों को जिस बात का भय सताता है उससे धर्मियों की इच्छाएं पूरी होती हैं। क्या यह सदैव सत्य है? स्तोत्र 72:73 कहता है, नहीं, धर्मियों का पतन हो रहा है और दुष्टों का कल्याण हो रहा है। भगवान दुष्ट क्यों समृद्ध हो रहे हैं? वह दुष्टों की समृद्धि के इस तथ्य से जूझ रहा है। परंतु यह कहावत कहती है कि उस पर दुष्टों का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, नहीं, दुष्टों को वे सब अभिलाषाएं मिल गईं जो धर्मियों को मिलनी चाहिए। यह सिर्फ इतना दर्शाता है कि कहावतें पूरी तरह से सार्वभौमिक सत्य नहीं हैं। आप बस एक कहावत को पकड़कर उसे जीवन में सार्वभौमिक सत्य के रूप में नहीं ले सकते। यह एक कहावत है। इसका मतलब इस तरह सार्वभौमिक सत्य होना नहीं है। अब अगली कहावतें वर्णन करती हैं। कुछ कहावतें आपको यह नहीं बताती हैं कि क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए कि आपको अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इसी तरह की चीजें। लेकिन उनमें से कुछ तो ऐसे ही हैं जैसे कि कहावतें हैं। इस कहावत में चाहिए या चाहिए जैसा कोई घटक नहीं है। और इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन 19:04 में धन कई नए दोस्त लाता है। आप कहते हैं, अच्छा, ये किस तरह के दोस्त होते हैं? आप जानते हैं, धन नए दोस्त लाता है, लेकिन कहावतें इसे सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं। धन नए मित्र लाता है, परंतु कंगाल को उसका मित्र त्याग देता है। आप कहते हैं, ठीक है, यह सही नहीं है। लेकिन नीतिवचन कह रहे हैं, अरे यार, यह सही या गलत नहीं है। जैसा भी यह है। और इसलिए नीतिवचन कभी कभी ज्ञान साहित्य होते हैं जो बताते हैं कि जीवन कैसे काम करता है। और कभी कभी दौलत कई दोस्त लाती है। एक गरीब आदमी को उसके दोस्त ने छोड़ दिया है। अगली आयत नीतिवचन 19:06 बस एक जोड़े के नीचे कहती है, कई लोग एक उदार व्यक्ति की कृपा चाहते हैं। और जो मनुष्य उपहार देता है उसका हर कोई मित्र होता है। उपहार देने वाले का हर व्यक्ति मित्र होता है। तो जो लोग उपहार और सामान की आपूर्ति करते हैं उनमें तेजी आती है, उन्हें कई दोस्त मिलते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, यह वास्तव में सही नहीं है। क्या इसीलिए आपका आधार मित्रता है? और ये कहावत कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या होना चाहिए। यह तो ऐसा ही है यार। जो लोग उधार देते हैं वे कई मित्रों को आकर्षित करते हैं। कई लोग एक उदार व्यक्ति का अनुग्रह चाहते हैं, और इसलिए आप देखिए, आप ऐसे लोगों को जानते हैं। मेरी पत्नी कई वर्षों तक अकाउंटेंट थी, और ये बहुत बहुत अमीर लोग, वे कभी नहीं जानते थे कि वे किस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक तरह से उन पर आश्रित हो जाएंगे। और मूलतः आप यह नहीं जानते थे कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपको पसंद करता है और आपका सच्चा दोस्त बनने जा रहा है, या क्या वे सिर्फ आपके पास मौजूद पैसों के पीछे थे। वे चोरी करने या चोरी करने की कोशिश करेंगे, या आपको मिलने वाले कुछ लाभ उन्हें मिल जाएंगे। और उनमें से बहुत से थे, और बहुत से अमीर लोग हमेशा अपनी दोस्ती के बारे में संदेह करते थे, क्योंकि वे कभी नहीं जानते थे कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा था या नहीं, कि वे आपके सच्चे दोस्त थे, कि वे आपका समर्थन करते थे या कुछ भी। कई लोग एक उदार व्यक्ति का अनुग्रह चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसा यह है, और यह बार बार होता है। 19:7 नीतिवचन 19:4-6-7, ये सभी बिल्कुल वैसे ही नीतिवचन हैं। गरीब आदमी के सभी भाई उससे नफरत करते हैं। एक गरीब आदमी के सभी भाई उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वह आदमी हमेशा अपने भाई के पास आकर कहता है, अरे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे यहाँ एक समस्या है, मुझे वहाँ एक समस्या है, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, और इसलिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मेरे भाई हो। और थोड़ी देर के बाद उस गरीब आदमी के भाई उससे नफरत करने लगे। यह हमेशा सच नहीं है, लेकिन कभी कभी यह सच होता है। और उसके दोस्त उससे कितना दूर चले जाते हैं? तो यहाँ एक जरूरतमंद व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो गरीब है, और मूल रूप से उसका भाई समाप्त हो गया है। वह मदद के लिए उनके पास जाता है, और वहाँ उसे नफरत मिलती है, और दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसे जरूरत और चीजों की जरूरत होती है। तो नीतिवचन कुछ कहावतें यह नहीं बताती हैं कि यह कैसा होना चाहिए या होना चाहिए, बल्कि यह वैसा ही है। और हम में से कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत बुरा है, यह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन कहावतें वापस आती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं, हम आपको वास्तविक जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। यही है, यही होता है, यह तो बस ऐसा ही है। तो वहां भी कुछ है, अब ये मजेदार हैं। कभी कभी कहावतों में यह चंचलता आ जाती है, और वे विरोधाभासी कहावतें कहलाती हैं। या वोल्फगैंग मीडर नाम का एक व्यक्ति है, जो संभवतः नीतिवचन पर दुनिया का अग्रणी विशेषज्ञ है। वह पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, मुझे नहीं पता, 5-10 भाषाएं, और इसलिए उसे रूसी कहावतें और ये सभी अलग अलग जर्मन कहावतें वगैरह, अंग्रेजी कहावतें, ये सब पसंद हैं। और वह अमेरिकी कहावतों के ये शब्दकोश बनाता है, और उसके पास 1200 पृष्ठों का एक शब्दकोश है, जिसमें वह अमेरिका की सभी कहावतों को इकट्ठा कर रहा है, या जर्मन कहावतों में जाकर फिर से एक किताब इकट्ठा कर रहा है, बड़ी किताब, रूसी कहावतें वगैरह वगैरह। और फिर दुनिया भर की कहावतों की जांच करने के बाद इस आदमी को वास्तव में अच्छी समझ आती है कि कहावत क्या है। मुझे डर है कि हमारे अधिकांश बाइबल अध्ययन लोग यह भी नहीं जानते कि वोल्फगैंग मीडर कौन है। अगर मैंने उसका नाम कहा मीडर, तो कोई नहीं जानता कि वह कौन है। और समस्या यह है कि वह दुनिया भर की कहावतों की जांच करने वाला दुनिया का अग्रणी विशेषज्ञ है। अफ्रीका में ढेर सारी कहावतें उपयोग में लाई जा रही हैं, वर्तमान में उन संस्कृतियों में उपयोग की जा रही हैं। यह आदमी उनके बारे में जानता है। ठीक है। कहावतों और विभिन्न संस्कृतियों और वे कैसे काम करती हैं, इस पर कई कई बड़ी किताबें लिखी हैं। और इसलिए वह उन्हें मुड़ी हुई कहावतें कहता है। और इसलिए मैं बस इनमें से कुछ विकृत कहावतों के साथ खेलना चाहता हूँ। दरअसल मैं अंग्रेजी उदाहरणों का उपयोग करूँगा, ऐसे उदाहरण जिनसे हम सभी परिचित हैं, लेकिन सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि नीतिवचन के बारे में एक निश्चित चंचलता है। कहावत हमेशा नहीं है, यह दिव्य सत्य हमारे पास आ रहा है, और बूम यहाँ यह एक कहावत में है। यह ईश्वरीय सत्य है, इसलिए सार्वभौमिक एवं निरपेक्ष है। यह सच नहीं है। कहावतें इस तरह काम नहीं करती। और हाँ, भगवान कहावतों और कविता का उपयोग करते हैं। लोकोक्तियों में सुंदर काव्य होता है। यदि आप नीतिवचन 31 को देखते हैं तो इस पर ध्यान न देने के लिए क्षमा करें, लेकिन नीतिवचन 31 यह सदाचारी महिला VW सदाचारी महिला की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। अंत में सुंदर सुंदर कविता, और यह एक्रोस्टिक है। तो यह ABCD की तरह वर्णमाला के माध्यम से नीचे चला जाता है, और इसीलिए यह 22 छंद लंबा है, क्योंकि वर्णमाला में 22 छंद हैं। तो वैसे भी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि हाँ, इसमें साहित्यिक चीजें हैं जो नीतिवचन की सुंदरता में आती हैं, लेकिन आइए सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं। मेरी एक बेटी छोटी थी, नतन्या जवान थी, और इसलिए मैंने कोशिश की। मैं एक सुबह का व्यक्ति हूँ और मुझे एहसास हुआ कि अब सुबह के लोग और रात के लोग हैं और दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी शादी एक गंभीर रात्रि व्यक्ति से हुई है। वह आधी रात से 2 बजे के बीच चलती है। मैं एक गंभीर प्रातःकालीन व्यक्ति हूँ, तो सुबह 5 से 8 बजे तक का समय मेरा सबसे अच्छा समय है। ठीक है, तो हम इस तरह से चूक जाते हैं। जब आप जवान होते हैं तो आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ 50 साल तक रहते हैं, एक अद्भुत पत्नी जो मेरे पास है, तो आपको एक तरह की कमी का एहसास होता है और आप इसे बदलने नहीं जा रहे हैं। यह उनके DNA में ही बसा हुआ है। तो मेरी बेटी, मैं उसे उठाना चाहता था और कहना चाहता था, तुम्हें पता है, तुम्हें स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है और तुम सुबह पूरी तरह से चार्ज हो जाती हो और तुम तुरंत बिस्तर से उठ जाती हो, और हे भगवान, तुम इसे दौड़कर मारो। और इसलिए मैंने कहा, मूलतः यहाँ एक कहावत है, जल्दी पक्षी कीड़ा पकड़ता है। हर कोई जानता है कि यह एक कहावत है। यह सच है, तो यह उस दिशा में थोड़ा सा धक्का लेकर आता है, जल्दी पक्षी कीड़ा पकड़ता है। तो मुद्दा यह है कि शुरुआती पक्षी बनने के लिए आपको समय पर काम करना होगा, और वास्तव में मैं आधे घंटे पहले काम पर जाता था। तो आपके पास सेटअप और सामान है, और आप जानते हैं, जब आप देर से निकलते हैं और आप इसी तरह काम करते हैं, कम से कम मैंने कैसे काम किया, तो शुरुआती पक्षी को कीड़ा लग जाता है। अब मेरी बेटी वास्तव में सबसे ज्यादा है, मेरे सभी बच्चे मुझसे ज्यादा होशियार हैं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने बिना कोई चूक किए मेरे चेहरे पर यह चाबुक मारा। अरे हाँ, आप यह कहावत चरितार्थ करना चाहते हैं पिताजी? ठीक है, जल्दी उड़ने वाला पक्षी कीड़ा प्राप्त करता है, वह मेरे पास वापस आती है। वह कहती है, हाँ पिताजी, लेकिन दूसरे चूहे को पनीर मिल जाता है। दूसरे चूहे को पनीर मिलता है, शुरुआती पक्षी को कीड़ा मिलता है, लेकिन दूसरे चूहे को पनीर मिलता है, पहले चूहे का क्या हुआ? बूम, जाल। ठीक है, तो दूसरे चूहे को पनीर मिल जाता है। तो दूसरे शब्दों में वह जो कह रही है वह यह है, हाँ हाँ आप जल्दी उठते हैं, पक्षी को कीड़ा मिलता है, लेकिन कभी कभी यह दूसरा चूहा होता है जिसे पनीर मिलता है। आपको हमेशा प्रथम व्यक्ति बनना जरूरी नहीं है, और इसलिए अगर वह सिर्फ एक चतुर चाबुक है और हमने उसके साथ कुछ मजा किया है, उसने मुझे गोली मार दी और मुझे यह पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ एक और है। यह एक क्लासिक अंग्रेजी कहावत है, अनुपस्थिति दिल में और प्यार भर देती है, और अनुपस्थिति की इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर दिल और भी भावुक हो जाता है जब कोई दूर जा रहा होता है और उसकी अनुपस्थिति के बारे में सोचता है। जब मैं मदरसा में था, मेरी पत्नी बफेलो में वापस आ गई थी और वहां स्कूल जा रही थी, और उसकी अनुपस्थिति से दिल और भी स्नेहमय हो गया था। और इसलिए आप पत्र लिखते हैं, आप चीजें करते हैं, और बस स्थान के पृथक्करण के कारण अनुपस्थिति हृदय को स्नेहपूर्ण बना देती है, और आप कहते हैं हाँ मुझे यह पता है, या क्या यह अनुपस्थिति दिल को भटका देती है। अब इस पर एक अलग दृष्टिकोण है, अनुपस्थिति दिल में और प्यार भर देती है। वाह, अनुपस्थिति दिल को भटका देती है। और ऐसी कितनी स्थितियां हैं जहां दो लोग अलग हो जाते हैं, आप जानते हैं, और वे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अचानक वह प्रकट होती है और वह किसी से प्रेमालाप कर रही है, और वह चली गई है या वह चला गया है, और उसकी अनुपस्थिति दिल को भटका देती है। क्या तुम्हें वहां शौक से खेलना और घूमना फिरना आता है? मीडर और अन्य लोग इन टेढ़ी-मेढ़ी कहावतों को यही कहेंगे, जहां आप एक कहावत ले रहे हैं और उसे एक दिलचस्प स्थिति में तोड़मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो अनुपस्थिति हृदय को स्नेहपूर्ण बनाती है, हाँ, लेकिन अभाव भी दिल को भटका देता है। या यहां इसे दृष्टि से दूर, दिमाग से बाहर रखने का एक और तरीका है। और इसलिए जब आप इस तरह अलग हो जाते हैं, नजरों से दूर, मन से दूर, और इसलिए आप जानते हैं लोग अलग अलग तरीकों से चलते हैं, तो आपके पास ये दो कहावतें हैं जो आपस में टकराने वाली कहावतें, टेढ़ी मेढ़ी कहावतें और ऐसी ही कुछ बातें हैं। तो ये आधुनिक उदाहरण सीखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। आप सीखने के लिए कभी बूढ़े नहीं होते, हालांकि एक और कहावत है, लेकिन आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, ठीक है। आप सीखने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं होते, लेकिन आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते। और इसलिए यहां आपको ये दो कहावतें मिली जो आपस में टकराती हैं। और बात यह है कि यह ज्ञान साहित्य है, आप इसकी उम्मीद करते हैं, आप वह टकराव चाहते हैं, क्योंकि टकराव आपको जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, और आप सीखने के लिए कभी बूढ़े नहीं होते, आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते। जब उनमें टकराव होता है तो यह आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि बड़े होने पर सीखने का क्या मतलब है, और यदि यह अब संभव है तो नीतिवचन स्वयं ऐसा करता है। और नीतिवचन 26, 4 और 5 पर एक पूरा वीडियो है जो मैंने डाला है, और यह कहता है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तुम भी उसके समान बन जाओ। इसलिए मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तुम भी उसके समान बन जाओ, ठीक है। तो आप एक मूर्ख से मिलते हैं, क्या तुम नहीं, तुम मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देते, क्योंकि तब तुम भी उसके समान हो जाओगे, ठीक है। अगला श्लोक क्या कहता है? नीतिवचन 26:4, नीतिवचन 26:5 क्या है? उन्हें एक के बाद एक रखा गया है। ये एक कहावत वाली जोड़ी है। नीतिवचन 10-29 तक की इन लौकिक कहावतों या वाक्यों में भी इन्हें अक्सर जोड़ा जाता है, और इसलिए यहां हमारे पास 26:4 और 5 एक साथ जोड़े गए हैं। मैंने एक अन्य वीडियो में इस पर और अधिक विस्तार से चर्चा की है। तो पहला पद कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तुम भी उसके समान बन जाओ। अगली आयत कहती है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो, ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। तो अब आप समझ गए हैं। आप कहते हैं, पवित्र गाय, अब मैं क्या करूं? मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो बहुत मूर्ख है। क्या मैं मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देता हूं या मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देता? बाइबल दोनों बातें कहती है। आप कहते हैं, यह विरोधाभास जैसा है। यहां तक कि शुरुआती लोग जो एक साथ एक कैनन बना रहे थे, उन्होंने नीतिवचन को लेगोमेना विरोधी कहना शुरू कर दिया। एंटी विरुद्ध है, लेगोमेना एक ग्रीक शब्द है, विरुद्ध बोला गया, वे किताबें जिनके विरुद्ध बोला गया था। और नीतिवचन उन किताबों में से एक थी जिसके खिलाफ बात की गई थी, एस्तेर की तरह, क्योंकि इसमें भगवान के नाम या गीतों के गीत का उल्लेख नहीं था, क्योंकि गीतों का गीत गीतों का गीत है। और क्या यह बाइबल में होना चाहिए? यहां तक कि 20वीं सदी में मेरी मां ने भी मुझसे यह सवाल पूछा था। तो यहां एक विरोधाभास है। और लोगों ने कहा, ठीक है, बाइबल में एक विरोधाभास है। 26:4 और 5, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो, किसी मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो, विरोधाभास, और इसलिए यह बाइबल में नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसकी विहित स्थिति के बारे में कुछ प्रश्न थे। इसलिए इसे पुराने नियम में 5 एंटीलेगोमेना में से एक में रखा गया था। यह कहावत है, कोई बात नहीं, ये चीजें टकराने के लिए हैं। टकराव आपको चीजों के बारे में अधिक गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो कहावतें इसी तरह बनाई जाती हैं। अब जब आप कोई कहावत लेते हैं तो क्या आप उसे पलट सकते हैं? क्या आप इसे पलट सकते हैं? यदि एक्स तो वाई, ठीक है, सत्य है। यदि एक्स, यदि आप एक्स करते हैं तो वाई सत्य है। तो क्या आप इसे पलट सकते हैं? यदि वाई तो एक्स सत्य है। तो यह एक प्रकार का यदि तब कथन है। यदि आप जानते हैं, एक बच्चे को प्रशिक्षित करें कि आप कैसे चलते हैं, जब वह बूढ़ा हो जाता है और उससे दूर नहीं जाता है, तो क्या आप कह सकते हैं, जब वह बूढ़ा हो जाता है, यदि वह बूढ़ा हो जाता है और उससे दूर नहीं जाता है, तो आपने अच्छा काम किया होगा? क्या वह सच है? क्या आप यदि तब को पलट सकते हैं? यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। यदि आप अमीर हैं तो क्या इससे यह साबित होता है कि आपने कड़ी मेहनत की होगी? फिर आपने कड़ी मेहनत की? आवश्यक रूप से नहीं। यह एक भ्रांति है। यह एक तार्किक भ्रांति है। यदि x तो y, जब आप उन्हें बदलते हैं और कहते हैं यदि वाई तो एक्स, जबकि पहला कथन सत्य हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा कथन बिल्कुल भी सत्य है। तो इसे तार्किक भ्रांति कहा जाता है, और आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको सावधान रहना होगा। अगर अच्छी ट्रेनिंग तो एक अच्छा बच्चा, यदि अच्छा प्रशिक्षण, नीतिवचन 22:6, यदि अच्छा प्रशिक्षण तो एक अच्छा बच्चा। आप यह नहीं कह सकते कि अच्छा बच्चा है तो अच्छी ट्रेनिंग भी हुई होगी। आप यह नहीं जानते। ठीक है, यह यद्यतब कथनों की एक तार्किक भ्रांति है जिस पर तर्क और दर्शन के क्षेत्र में अच्छी तरह से काम किया गया है। तो चलिए मैं इसे दूसरे तरीके से साबित करता हूँ। क्या ऐसे अच्छे माता-पिता के उदाहरण हैं जिनके बच्चे बुरे थे? क्या ऐसे अच्छे माता-पिता के उदाहरण हैं जिनके बच्चे बुरे थे? क्या बाइबल में ऐसे अच्छे माता-पिता के उदाहरण हैं जिनके बच्चे बुरे थे? ठीक है, मैं आपको एक क्लासिक उदाहरण देता हूँ। मैं यशायाह अध्याय 1:2 पढ़ने जा रहा हूँ। इस श्लोक ने मेरी मदद की क्योंकि जब मैं छोटा था तो माता-पिता के रूप में मैंने बहुत सी चीजें गलत की। मैं उन चीजों पर नजर डालता हूँ और मुझे उन चीजों पर पछतावा होता है। काश मुझे इसे दोबारा करना पड़ता, लेकिन यह अभी जैसा ही है। बच्चे अंदर बंद हैं, मैं अंदर बंद हूँ। हम बात कर सकते हैं और इस तरह की चीजें, और मुझे अद्भुत बच्चे मिले हैं। मैं जितना योग्य था उससे कहीं अधिक बेहतर। इसका मुख्य कारण यह था कि मेरी एक बहुत अच्छी पत्नी थी और वह बहुत सी कमजोरियों को दूर करने में सक्षम थी जिन्हें मैंने दुर्भाग्य से छोड़ दिया था। और कई मायनों में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। कई मायनों में इसीलिए मैंने नीतिवचन की पुस्तक का अध्ययन किया क्योंकि मैं बच्चों का पालन पोषण करना चाहता था और मुझे यकीन नहीं था कि यह कैसे करना है। और मैं जानता था कि यह मेरे जीवन में सचमुच एक महत्वपूर्ण चीज थी। और फिर मैंने गड़बड़ कर दी और वैसे भी इस श्लोक ने मेरी मदद की। ठीक है, यशाया 1:2 परमेश्वर बोल रहा है। वह कहता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है। अब यह भगवान बोल रहा है। यह कोल अमरमार यहोवा है। यह है यहोवा यों कहता है। ठीक है, क्योंकि प्रभु ने कहा है। उसका क्या कहना है? जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है, मुझे उसे दोबारा पढ़ने दीजिए। यह इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे करना चाहिए। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह इससे नहीं हटेगा। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा और बड़ा किया, क्या ईश्वर पूर्ण पिता है? हाँ वह है। बच्चों को मैंने पाला पोसा परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। ठीक है, भगवान ही आदर्श माता पिता हैं। और उसके बच्चे भी भटक गए जंगल में, इज़राइल वगैरह वगैरह। तो आपको इस तरह की एक कहावत को लेने और इसे सार्वभौमिक बनाने, इसे निरपेक्ष बनाने, यह कहते हुए सावधान रहना होगा कि एक बच्चे को उस तरीके से प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे जाना चाहिए, और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह इससे नहीं हटेगा। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को प्रशिक्षित किया, मैंने उनके लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैं उन्हें मिस्र से बाहर ले आया, मैंने उन्हें रेगिस्तान के बीच में खाना खिलाया, मैं उनके लिए चट्टान से पानी लाया और उन्हें चमत्कारी तरीकों से प्रदान किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। और फिर भी मेरे बच्चों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। और भगवान उस दर्द को व्यक्त कर रहा है जो वह महसूस करता है। तो यशाया 1:2 बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक कहावत कोई वादा नहीं है, और आप एक अच्छे माता पिता और एक आदर्श माता पिता हो सकते हैं और फिर भी आपके बच्चे विद्रोही हो सकते हैं। भगवान ने स्वयं को उस स्थिति में पाया। अब क्या किसी व्यक्ति के लिए एक बुरा माता पिता बनना और एक अच्छा बच्चा पैदा करना संभव है? आप कहते हैं, नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्या ऐसे उदाहरण हैं कि एक बुरे माता पिता ने एक अच्छा बच्चा पैदा किया? मुझे शाऊल और जोनाथन के बारे में बताओ। पुराने नियम में शाऊल को इसराइल का राजा बनाया गया था। इसराइल का पहला राजा, आप जानते हैं, दाऊद से 1000 ईसा पूर्व हुआ था। और फिर वह डेविड का पीछा करना शुरू कर देता है, डेविड को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि डेविड उसके बाद भगवान का अभिषिक्त था, क्योंकि उसने कई स्थितियों में, कुछ स्थितियों में सैमुअल के साथ गड़बड़ की थी। और अब मुझे शाऊल के पुत्र योनातान के विषय में बताओ। पुराने नियम में कुछ लोग ऐसे हैं जो रत्नों की तरह हैं। जैसे मुझे पुराना नियम पसंद है, क्योंकि पुराना नियम इसे वैसे ही बताता है जैसे यह है। और इसलिए यहां तक कि परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति दाऊद को भी बड़ी बड़ी समस्याएं और बड़ी बुराई करते हुए दिखाया गया है। सुलेमान अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गड़बड़ी करता है, और पहले राजा 11 में विभिन्न पत्नियों और रखैलियों के साथ उसकी मूर्खता के कारण राज्य 10 जनजातियों और 2 जनजातियों में विभाजित हो गया। तो मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि बाइबल लगभग इब्राहिम पर मस्से दिखाने और उसकी समस्याएं होने और मूसा की अपनी समस्याएं और चीजें दिखाने से डरती नहीं है। और इसलिए बाइबल में सभी नायकों, उनमें से लगभग सभी के पास मस्से या कुछ भी हैं। हालांकि अब आप इसे हमारी संस्कृति में कहना चाहते हैं कि चीजें खराब थीं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण जो प्रतिउदाहरण की तरह हैं, वे हैं जोसेफ। एक तो हर कोई जोसेफ में अहंकार ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे यकीन नहीं है कि उत्पत्ति के अंतिम अध्यायों का यही मतलब है, लेकिन जोसेफ वास्तव में एक रत्न था। दानियल एक और व्यक्ति है जो डायनामाइट जैसा है, उत्कृष्ट व्यक्ति है। लेकिन यहाँ एक है जिसे अक्सर छोड़ दिया जाता है, वह शाऊल का बेटा जोनाथन है। और मैं उसे देखता हूँ और कहता हूँ, यार यह आदमी अद्भुत है। वह डेविड का दोस्त था, और जब डेविड का अभिषेक हो जाता है तो जोनाथन यह नहीं कहता है, अरे यार शाऊल राजा है, मैं पंक्ति में अगला हूँ, डेविड यहाँ से चले जाओ, मैं कतार में अगला हूँ। जोनाथन अपना लबादा उतारता है और डेविड को देता है। यह दर्शाता है कि डेविड तुम ही वह आदमी हो, परमेश्वर ने तुम्हें इसराइल का राजा बनने के लिए चुना है। और जोनाथन वहां कोई ईर्ष्या नहीं दिखती, कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत समर्थन डेविड के लिए, जोनाथन का समर्थन। और इसलिए जोनाथन पलिश्तियों के विरुद्ध निकल जाता है। वह और उसका कवच वाहक बाहर जा रहे हैं और वे वाडी सुवेनिट 200 फीट की चट्टान पर चढ़ते हैं। वे ऊपर चढ़ते हैं और वहां 20 पलिश्ती अपना सिर काटने के लिए तैयार होते हैं। जोनाथन लड़ता है, वह एक प्रमुख योद्धा है, और 2 लोग 20 पलिश्तियों और अन्य चीजों को हरा देते हैं। तो जोनाथन एक योद्धा प्रकार का चरित्र है, और वह भगवान पर भरोसा करता है। यदि परमेश्वर हमें उनके हाथ में सौंपना चाहता है तो वह ऐसा करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम ऊपर जाएंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। उसने भगवान पर भरोसा किया और ऊपर गया और उन्हें बाहर ले आया। तो जोनाथन एक महान विश्वासी व्यक्ति, एक महान वीरतापूर्ण व्यक्ति, एक महान साहसी व्यक्ति और सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। मेरा मतलब है, डेविड और जोनाथन, आप ऐसी दोस्ती नहीं देखते। 2 लोगों के बीच सचमुच बहुत गहरी दोस्ती है। जब जोनाथन अपने पिता के साथ मारा गया तो डेविड रोया। यदि तुम वहां एक राजाओं को देखो तो पलिश्तियों ने उसे मार डाला। यह एक राजा नहीं है, यह 2 सैमुअल है। आप 2 सैमुअल की शुरुआत को देखें जहां डेविड विलाप करता है, वह शाऊल और जोनाथन की स्तुति करता है और जोनाथन विजेता है। शाऊल एक पिता के लिए सचमुच एक झटका था। जोनाथन एक रत्न की तरह निकला। इसलिए एक बुरे माता पिता के लिए एक अच्छा बच्चा पैदा करना संभव है। दूसरों द्वारा अच्छे बच्चों का पालन पोषण करने के अन्य उदाहरण भी हैं। तो दूसरे शब्दों में माता पिता किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं हैं। मैं क्लेरेंस थॉमस के बारे में सोचता हूँ जो इस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में हैं और एक अद्भुत व्यक्ति हैं। वह अब कुछ आलोचना के लिए आ रहे हैं। यह वास्तव में अनुचित है, लेकिन क्लेरेंस थॉमस का पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया, तो दादा दादी ने कदम बढ़ाया, इस व्यक्ति को गरीबी और चीजों से ऊपर उठाया और अब वह दशकों से सुप्रीम कोर्ट में है। क्लेरेंस थॉमस माता पिता द्वारा अपना काम न करने का क्या अद्भुत उदाहरण है। मैं सारी जानकारी नहीं जानता, इस पर एक किताब और ऐसी ही चीजें हैं। यह शायद पढ़ने लायक है क्योंकि वह एक रत्न है, लेकिन उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। बाइबल में योआश अतल्याह से बच निकला और योआश को दूसरे राजा 11 में एक पुजारी यहोयादा ने पाला, इसलिए पुजारी यहोयादा ने योआश को उठाया और फिर योआश राजा बना। यह उस पुजारी के प्रशिक्षण के कारण था जो उसके लिए बहुत मददगार था। अन्य समय में मिश्रित पालन पोषण होता है। मेरी एक दोस्त है, वह उस समय कॉलेज जा रही थी और वह अंदर आई और हमने बात की। उसका पति शराबी था, उसके दो बच्चे थे और वह एक दिन शराब पीकर घर आया और दो चार लेकर दीवार में चुन दिया। अगले दिन वह सुबह उठता है और उन बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देता है जिन्होंने दीवार में दो चार करके ऐसा किया था, और बच्चों पर रोना शुरू कर देता है जबकि उसने ही ऐसा किया था। तो उसे इसका सामना करना पड़ा और उसे इससे जूझना पड़ा। तो वह वास्तव में संघर्ष कर रही थी। तो यह संभव है कि माता पिता, आपके पास एक माता पिता हैं जो सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे माता पिता हैं जो वास्तव में गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे चार्ल्स पायने का एक और उदाहरण टीवी पर एक बिजनेस चैनल पर है। फिर उसका पालन पोषण उसकी मां ने किया क्योंकि उसके पिता आगे बढ़ गए। तो आपके पास ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं। यहां तक कि मैं अपनी बेटी के बारे में भी सोचता हूं, जहां वैसे भी पिता भाग जाता है और बच्चे के जीवन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है, लेकिन बच्चा एक रत्न बन जाता है, बेंजामिन और इसी तरह की चीजें। सबसे बुरी समस्या यह है कि वह ओहायो राज्य गया, लेकिन मैं इसे उसके खिलाफ ज्यादा नहीं मानता। तो वैसे भी यह संभव है कि माँ एक बच्चे को बड़ा करती है और पिता मदद करता है, या इसके विपरीत, और फिर बच्चा अच्छा निकलता है और उनमें से कुछ बुरे निकलते हैं। तो जीवन जटिल है और चीजें हैं और आपको सावधान रहना होगा। जीवन जटिल है। कहावतें अपनी बातों में अधिक विलक्षण होती हैं, इसलिए कभी कभी समय काम नहीं करता। आप बच्चे को सही समय पर प्रशिक्षित करते हैं जब बच्चा बूढ़ा हो जाता है, हालांकि बच्चा कभी बूढ़ा नहीं होता है। वह एक कार से टकरा जाता है या वह कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह बच्चा मारा जाता है, और इसलिए वह कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो आपको यहां समय का कारक भी मिल गया है। आप एक बच्चे को सही ढंग से प्रशिक्षित कर सकते हैं और समय चीजों को गड़बड़ा सकता है। उड़ाऊ व्यक्ति अपने मार्ग की भूल के कारण मर जाता है। तो बच्चा एक उड़ाऊ व्यक्ति बन जाता है, वह चला जाता है और वह चारों ओर गड़बड़ कर रहा है, और फिर अचानक वह किसी फेंटेनल या कुछ और किसी नशीली दवा की चीज में चला जाता है और फिर तेजी से बढ़ता है। तब कोई पश्चाताप नहीं होता, उसके लिए कोई समय नहीं होता, बच्चा बस मर जाता है या ऐसा ही कुछ। एक जंगली बच्चा, हम में से कितने लोग ऐसे बच्चे को जानते हैं जो बचपन में जंगली था। जब वे छोटे थे तो वे जंगली और अदम्य प्रकार की चीज थे, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो वे इसे बदल देते हैं। तो मेरे पास उदाहरण है, शायद प्रेरित पॉल ऐसे ही होंगे। जब वह छोटा था तो वह चर्च पर अत्याचार कर रहा था और स्टीफन का उसके सामने मरना और इस तरह की चीजें कर रहा था। तो फिर आपके पास साइमन द ज़ीलॉट है जो प्रेरितों में से एक है। साइमन कट्टरपंथी, वह पहले था, वह एक कट्टरपंथी था, वह यीशु से मिला और यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। मैं पाउली नाम के एक लड़के के बारे में सोचता हूँ जिसके लिए मेरी पत्नी बच्चों की देखभाल करती थी। उसके पिता मेरे जीवन में अब तक मिले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे और वास्तव में अच्छे लोगों में से एक थे, और फिर भी उनका बेटा वास्तव में कुछ गंभीर दवाओं में डूब गया और काफी समय तक भटक गया। लेकिन फिर अचानक वह अब वापस आ गया है और वह सिर्फ एक जीवंत ईसाई व्यक्ति है। मैं कहना चाहूंगा नवयुवक, लेकिन वह वास्तव में अब उतना युवा नहीं है। मेरे अपने भाई ने मारिजुआना और उस जैसी चीजों के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने जीवन के 10 साल गवा दिए। इसने उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। मेरा छोटा भाई, जो मुझसे ज्यादा होशियार है, अगर चाहता तो पीएचडी कर सकता था। वह एक विश्व स्तरीय धावक भी हो सकता था और ऐसी ही कुछ चीजें। लेकिन जब वह छोटा था तो वह गड़बड़ कर रहा था। फिर क्या हुआ, वहां 10 साल की अवधि और गड़बड़ हो गई और फिर उसने इसे पलट दिया और उसने अपना काम शुरू कर दिया और अंततः यहाँ के प्रमुख शहरों में से एक में मेट्रो प्रणाली का उपाध्यक्ष बन गया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी सोचता हूँ जिससे मैं अभी अभी मिला था और वास्तव में अभी अभी सेंट लुइस क्षेत्र से लौटा हूँ। उसका नाम जैक है और जैक का एक बड़ा साथी है। यह पोलियो की गोली निकलने से पहले की बात है और इसलिए उसके एक पैर में पोलियो हो गया। खैर, यह पता चला कि जैक कुछ बुरे लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसलिए जैसे जैसे वह किशोरावस्था में आया, वह ऐसे लोगों के साथ घूमने लगा जो वास्तव में अच्छे नहीं थे। उनमें से लगभग सभी लोग किसी न किसी रूप में जेल पहुंच गए। यह कुछ गंभीर अपराध और उस तरह की चीजें हैं। चूंकि उसके पैर में पोलियो था, इसलिए वह घर पर ही रहने लगा और किताबें पढ़ने लगा और होशियार हो गया। तो यह तथ्य कि पोलियो उसके साथ हुई सबसे बुरी चीजों में से एक थी, सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित हुई, क्योंकि तब वह बाहर जाकर वह सब गैंगबैंगिंग चीजें करने में सक्षम नहीं था जो उसके दोस्त उस समय कर रहे थे। बिंदु और उसकी जान बख्श दी। फिर वह भी अब एक बुद्धिमान व्यक्ति है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? जीवन जटिल है। जीवन एक तरफ और दूसरी तरफ जा सकता है और आपको इससे सावधान रहना होगा। अब यह कहने के बाद और मूल रूप से मैं अब तक जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे संक्षेप में कहें तो एक कहावत कोई वादा नहीं है। कुछ कहावतें पूर्ण सार्वभौमिक कथन के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। कभी कभी वे इसका वर्णन वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे यह है। आप कहावत को पलट नहीं सकते। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे पीछे नहीं हटेगा। आप इसे उलटकर यह नहीं कह सकते कि ठीक है, अगर वह इससे नहीं हटा है तो मैंने उसे सही ढंग से प्रशिक्षित किया होगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। यह वास्तव में एक तार्किक भ्रांति है। इसलिए आपको इस प्रकार की चीजों से सावधान रहना होगा। एक बच्चे के जीवन में ऐसे कई कारक आते हैं जो उन्हें अच्छाई की राह पर ले जा सकते हैं या बुराई की राह पर ले जा सकते हैं। ये एक कहावत है। तो कहावत प्रशिक्षण, आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कई अन्य कारक भी शामिल हो सकते हैं। इसमें दोस्ती शामिल होती है, बच्चे के भीतर प्रवृत्तियां और सभी प्रकार की चीजें होती हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार में गतिशीलता भी, मेरे चार बच्चे थे और गतिशीलता लगभग ऐसी थी कि उनमें से कुछ बच्चों का पालन पोषण बिल्कुल अलग परिवारों में हुआ था, लेकिन फिर भी वे सभी मेरे बच्चे हैं और मेरे घर में पले बढ़े हैं। लेकिन हमारे अपने परिवार में चारों में से प्रत्येक का अनुभव बहुत अलग था। तो मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि किसी कहावत को निरपेक्ष बनाने में सावधानी बरतें। लेकिन आगे हम अंदर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करने का क्या मतलब है जिस तरह से उसे जाना चाहिए। तो वे तीन चीजें जिन पर हम गौर करने जा रहे हैं। प्रशिक्षित करने का क्या मतलब है? वह शब्द क्या है? हनक मतलब बच्चा क्या है? यह वास्तव में नार शब्द है। क्या वास्तव में बच्चे का मतलब बच्चा होता है? और क्या यह छोटे बच्चे के पालन पोषण के बारे में बात कर रहा है या कुछ और? और फिर जिस तरह से उसे जाना चाहिए, शब्द चाहिए वास्तव में हिब्रू में नहीं है। तो हमारे पास उन तीन क्षेत्रों में तलाशने के लिए कुछ चीजें हैं। बच्चे को प्रशिक्षित करना, जिस तरह से उसे जाना चाहिए, और हम आगे उससे निपटना चाहते हैं। हम ट्रेन अप से शुरुआत करेंगे। खैर, नीतिवचन 22:06 का परिचय, इसकी साहित्यिक शैली के संदर्भ में और नीतिवचन के साथ क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, आइए शब्द अध्ययन, तीन अलग अलग शब्द अध्ययन पर चलते हैं। अब हम पहले वाले को लेंगे, हनक, जिसका आम तौर पर अनुवाद एक बच्चे को प्रशिक्षित करना है जिस तरह से उसे जाना चाहिए। तो यह ट्रेन अप है और हम सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या यह प्रशिक्षण है? या जहां तक इसके अर्थ की बात है, तो क्या यह पहले प्रयोग की शुरुआत या समर्पित है? और इसलिए ठीक है, अनुवाद ट्रेन अप किंग जेम्स संस्करण, एनएसवी संस्करण, आरएसवी संस्करण, ईएसवी, टीवी और एनएलटी में पाया जाता है। तो यह अधिकांश आधुनिक अनुवादों में उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट अनुवाद में प्रशिक्षित है। समस्या यह है कि हनक शब्द का प्रयोग पुराने नियम में केवल 5 किया गया है, इसलिए हमारे पास इसके 5 या 4 अन्य मामले हैं जिनमें हमें किसी शब्द के अर्थ को संदर्भ में उसके उपयोग से स्थापित करने की आवश्यकता है, और इसलिए हमें इसके 4 अन्य उदाहरण मिले हैं और फिर यह 5वां है। तो इसका अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए जब पुराने नियम में इसका उपयोग केवल 5 किया गया है? इसलिए उदाहरण के लिए ईएसवी, किंग जेम्स और एनआरएसवी ने इसे इस तरह पढ़ा, एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह उसे जाना चाहिए और वह बूढ़ा हो जाने पर भी उससे न हटेगा। एनएलटी इसे समान रूप से लेता है, लेकिन यह कहता है अपने बच्चों को निर्देशित करें, अपने बच्चों को सही रास्ते पर निर्देशित करें और जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे इसे नहीं छोड़ेंगे। तो समान विचार, प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष। एनआईवी जाता है, थोड़ा अलग है, माफ करें, एनआईवी का कहना है कि शुरुआत करें, बच्चों को उस रास्ते पर ले जाना शुरू करें जिस रास्ते पर उन्हें जाना चाहिए और वे बूढ़े होने पर भी उससे न हटेंगे, और इसलिए बच्चे को जन्म देना प्रशिक्षण से थोड़ा अलग है। और इसलिए मैं वास्तव में एनआईवी उस संबंध में दिलचस्प है। अब सबसे पहले हम उन विभिन्न अर्थों को देखेंगे जो इस हनक शब्द के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, या प्रशिक्षित करने के लिए, या हम देखेंगे कि क्या यहां अन्य संभावनाएं हैं। तो पहला प्रकार अरबी मूल हनाका में जाता है, जिसका अर्थ है इच्छा को उत्तेजित करना। बीडीबी और कोहलर और बॉमगार्टनर शब्दकोश इस अनिवार्य रूप को लेते हैं जिसका उपयोग यहाँ नीतिवचन 22:06 में संज्ञा मूल इच्छा से एक संप्रदाय, संप्रदाय के रूप में किया गया है। तो इच्छा और वे, यह हे के शब्द से भी जुड़ा है जिसका अर्थ है मुंह का तालुक, मसूड़े या मुंह की जड़, हे के, हनक, हनक। और चित्रण का उपयोग अरब महिलाओं के लिए किया जाता है जो शहद लेती हैं। इसे मसूरों, हनक, एक बच्चे के तालू पर तेल और खजूर से मलती हैं। ठीक है, इसे और अधिक बनाने के लिए चूसना शुरू करने से पहले इसमें जैतून का तेल और खजूर मिलाया जाता है। बच्चे के लिए स्वादिष्ट। तो एक बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए मूल रूप से इस शहद और खजूर जैम जैसी चीज का उपयोग करके इच्छा को उत्तेजित करना है। इसे बच्चे के मुंह की छत पर रखना है ताकि बच्चा चूसना सीख सके। तो बच्चे में इच्छा पैदा करें। और यह इस बात का एक उदाहरण है कि इच्छा को उत्तेजित करने के लिए अरबी मूल के आधार पर इस शब्द को कैसे लिया जाता है। और यह आपके बच्चों में इच्छा जगाने के लिए अच्छा है। हम उसके खिलाफ बहस नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या इस शब्द का यह मतलब है? और वे कहते हैं कि इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि यह अल्पी दारा को है, उसके रास्ते के मुंह के अनुसार। और पाई का उपयोग वहां मुंह के रूप में किया जाता है, और इसलिए वे कहते हैं कि इसमें इस प्रकार की मौखिकता है। और यह बच्चे के तालू पर मीठी रसीली चीजें डालने पर वापस जाता है ताकि वे बेहतर तरीके से चूस सकें। और इसलिए इसकी पुष्टि तब होती है जब वह अपने तरीके के अनुसार, अपने तरीके के मुंह के अनुसार पाई शब्द का उपयोग करता है। फिर भी हम पाते हैं कि निर्गमन 34:27 में यह अल्पाई मुहावरा इन शब्दों के अनुरूप है। तो इस अन्य उपयोग में तालू या मुंह का कोई उपयोग नहीं है। नीतिवचन या व्यवस्था विवरण 17:10 और 11 भी अल्पाई का उपयोग करते हैं और इसका अर्थ वे जो घोषित करते हैं या निर्देशों के अनुसार करते हैं। और इसलिए इस अल्पाई के दोनों अन्य उपयोगों का अर्थ रास्ते के मुहाने पर नहीं है, मुंह में ट्रिगर करना। यह स्पष्ट रूप से है, यह एक मुहावरा है और आपको सावधान रहना होगा। आप मुहावरे नहीं ले सकते और उन्हें अलग नहीं कर सकते। और इसलिए इसके किसी भी उपयोग में कोई मौखिक निर्धारण नहीं है। तो यह वास्तव में कोई मजबूत तर्क नहीं है। जब आप अरबी मूल से निकल रहे हों, आ रहे हों और उसे हिब्रू में ला रहे हों और इस तरह की चीजें कर रहे हों, तो आपको व्युत्पत्ति के बारे में भी सावधान रहना होगा। उपयोग और संदर्भ अर्थ निर्धारित करते हैं, व्युत्पत्ति नहीं। और इसलिए आपको वास्तव में उपयोग और संदर्भ में सावधानी बरतनी होगी। व्युत्पत्ति संबंधी समस्याएं स्पष्ट हैं। अगर मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूं और कहता हूं, प्रिय, तुम उस शब्द के मूल अर्थ में प्यारी हो। खैर, क्यूट शब्द का मूल अर्थ था झुके हुए पैर। लेकिन जब मैं आज अपनी पत्नी के लिए प्यारा शब्द का उपयोग करता हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं है। ठीक है, अत व्युत्पत्ति अर्थ का निर्धारण नहीं करती। समय के साथ शब्द बदलते हैं। कभी कभी वे वैसे नहीं होते जैसे वे बदल गए हैं और उनका पहले से कोई संबंध नहीं होता। मुझे यह भी दिलचस्प लगता है। इमोजी। मेरी पत्नी इमोजी क्वीन है। कम से कम मेरे बच्चे तो यही कहते हैं। और ये कोई अंग्रेजी शब्द इमोजी नहीं है। तो आप कहते हैं कि इमोशन प्लस आइकन इमोटिकॉन के बराबर है। और लेकिन यह वास्तव में इमोजी शब्द है। और आप वहां भावना शब्द देख सकते हैं, लेकिन वह सही शब्द नहीं है। ठीक है, दरअसल यह इमोजी जापानी भाषा से लिया गया है, जहां टी का मतलब चित्र है और इमोजी का मतलब चरित्र है। तो यह मूलतः एक चरित्र चित्र है। इसे 1999 में विकसित किया गया था और लगभग 2008 में एप्पल के आईफोन द्वारा संचालित किया गया था। इसलिए यहां हमारे पास एक आधुनिक शब्द इमोजी है और आप देख सकते हैं कि आप अंग्रेजी में कुछ भावनात्मक चीजों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह मूल रूप से है, एक जापानी मूल मिला। तो आपको सावधान रहना होगा। व्युत्पत्ति अर्थ का निर्धारण नहीं करती। जिसे वे न्यू टेस्टामेंट डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट TDNT थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उसकी एक पूरी श्रृंखला थी जिसे मूल रूप से बंद कर दिया गया था क्योंकि वे व्युत्पत्ति विज्ञान और संदर्भ में इसके उपयोग पर बहुत अधिक आधारित थे। प्रसंग ही अर्थ निर्धारित करता है। प्रसंग वह अर्थ निर्धारित करता है। तो उत्तेजित करने वाली इच्छा वाली चीज, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। यह शायद है, यह शायद सही नहीं है। ठीक है, अब प्रशिक्षित करने के लिए यह नैतिक चरित्र और ज्ञान में एक बच्चे का पोषण, निर्देश और अनुशासित करने के अर्थ में है, और यह निस्संदेह नीतिवचन के साथ खूबसूरती से फिट बैठता है। और यह एक बच्चे को निर्देश देना, उसका पालन पोषण करना और उसे अनुशासित करना है। हालांकि कहावतों में अक्सर बेटे की उम्र कितनी होती है, ठीक है, कहावतों में पिता को संबोधित किया गया है, मेरे बेटे की सुनो, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, अपनी माँ की शिक्षा पर ध्यान दो। और नीतिवचन और नीतिवचन 13:24 की पुस्तक में अक्सर पिता अपने बेटे को संबोधित करता है, जो कोई छड़ी को भाला मारता है वह अपने बेटे से नफरत करता है, लेकिन जो उससे प्यार करता है वह उसे अनुशासित करने के लिए मेहनती है। और इसलिए आपको पूछना होगा, नीतिवचन में बेटे की उम्र कितनी होती है? और हम उस प्रश्न से तब निपटेंगे जब हम उससे निपटेंगे, जब हम नार शब्द पर आएंगे, जिसका अर्थ है बच्चा, एक बच्चे को प्रशिक्षित करना। एक बच्चा कितने साल का है? नीतिवचन की किताब में नार कितना पुराना है? और हम उस पर बाद में विचार करेंगे, परंतु जो छड़ी भाला चलाता है वह अपने पुत्र से बैर रखता है। नीतिवचन की किताब में बेटे की उम्र कितनी है? नीतिवचन 19:18 तू अपने पुत्र को ताड़ना दे क्योंकि आशा है। इसलिए नीतिवचन की पुस्तक अक्सर बेटे को अनुशासित करने और बेटे की शिक्षा पर चर्चा करती है। अब हमारे सामने सवाल यह है कि जिस बेटे की बात यहाँ की जा रही है वह कितने साल का है? लेकिन इसलिए एक बच्चे को प्रशिक्षित करें और बच्चे के प्रशिक्षण की आवश्यकता के रूप में अनुशासन, पालन पोषण और उस प्रकार की चीजों को प्रशिक्षित करने की धारणा स्पष्ट है, हमारी संस्कृति में स्पष्ट है, आप जानते हैं, हमें अनुशासन की आवश्यकता है। हमारे पास अनुपस्थित माता पिता हैं, हमारे पास व्यस्त माता पिता हैं, आपके पास हेलीकॉप्टर माता पिता हैं, आपके पास बाघ की माताएं हैं, आपके पास है, आप जानते हैं, मामा अब भालू हैं, यह देखते हुए कि हमारे स्कूलों में अब क्या चल रहा है। और मैं भगवान को उन मामाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ जो वास्तव में हमारे स्कूलों में जो कुछ भी चल रहा है उसके खिलाफ अपने बच्चों का बचाव कर रहे हैं। और बच्चों का पालन पोषण फोन स्क्रीन और टिकटॉक पर किया जा रहा है, और सभी प्रकार की चीजें जो बच्चों को बिगाड़ रही हैं स्पष्ट रूप से, और बच्चों को निराश कर रही हैं, बच्चे उदास हो रहे हैं, और सामान माता पिता के बजाय स्क्रीन द्वारा बड़ा किया जा रहा है, और एक अच्छे माता पिता का प्यार और पालन पोषण प्रशिक्षण का एकमात्र संदर्भ अरामी भाषा से आता है, और यह प्रायश्चित के एक तेज दिन के लिए एक प्रशिक्षण है। तो प्रायश्चित का दिन या योम किप्पुर, और इसका उपयोग अरामी में किया जाता है, यह हनक शब्द प्रशिक्षण के लिए है, और यह देर से उपयोग किया जाता है, और इस तरह की चीजें। तो फिर जब मैं कोई चेतावनी देता हूँ तो इसका उस तरह से अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है। लैमार्ड जैसे आधुनिक हिब्रू पर्यायवाची शब्द आमतौर पर तब उपयोग किए जाते हैं जब आप किसी को कुछ सिखाना या सीखना चाहते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षु, शिष्य जैसी अंग्रेजी शब्दावली के साथ हिनुक का अर्थ आधुनिक हिब्रू में शिक्षा है। इसलिए आधुनिक हिब्रू इसे इस शैक्षिक प्रकार के स्वाद के साथ लेती है। तो ट्रेन अब उस आधुनिक उपयोग के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। सवाल यह है कि हाँ ठीक है, आधुनिक हिब्रू में इसका उपयोग इसी तरह किया जाता है, क्या वास्तव में प्राचीन हिब्रू में इसका यही अर्थ था? और हमें सावधान रहना होगा कि आप आधुनिक हिब्रू को भ्रमित न करें। जब मैं वास्तव में इसराइल में था तब मुझे पता चला कि आम तौर पर आप हिब्रू में नमस्ते और अलविदा कैसे कहते हैं, यह शालोम होता था। आप शालोम कहते हैं और इसका मतलब नमस्ते होता है। आप अलविदा कहते हैं, आप शालोम और चीजें कहते हैं। अब जब मैं वहां था मुझे पता चला कि शालोम अभी भी नमस्ते कह रहा है। जब आप आधुनिक हिब्रू में अलविदा कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं अलविदा, और मैं एक तरह से निराश हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो अंग्रेजी इस चीज में आ गई है। मुझे याद है एक बार जब मैं एक दुकानदार से बात कर रहा था तो एक कैसेट लेने की कोशिश कर रहा था। क्या किसी को पता है कि कैसेट क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें जिन पर रीले लगी हुई थीं और उन पर रीले लगी हुई थीं जिनके चारों ओर चुंबकीय टेप लगा हुआ था, और फिर आप उन्हें सीडी रोम की तरह सुनते हैं, या आप लोग आज स्पोटिफाई या पेंडोरा पर क्या करेंगे जहां आप संगीत स्ट्रीम करते हैं, लेकिन आप इसे इन कैसेटों पर रखते थे और आप एक कैसेट प्लेयर लगाते हैं। इसलिए मैं एक कैसेट प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, और इसलिए मैं इस आदमी का वर्णन हिब्रू में करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी हिब्रू बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे इस मशीन के बारे में बताने की कोशिश की जो कि आप अपने कानों में सुनते हैं और इसी तरह की चीजें, और मैं दुकान से बाहर चला गया और आखिरकार मुझे वह मिल गया जो मुझे चाहिए था। लेकिन मैं दुकान से बाहर निकला और फिर अचानक कोई कहता है, ओह आपका मतलब कैसेट्स के लिए बहुवचन कैसेटिन था, और यही तो आप मांग रहे हैं। तो अगर मैंने सिर्फ कैसेट शब्द कहा, दूसरे शब्दों में, क्योंकि एक अंग्रेजी शब्द आधुनिक हिब्रू में आ गया था, इसलिए आपको आधुनिक हिब्रू और चीजों से सावधान रहना होगा। और कुछ मजेदार बातें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती हैं और अंग्रेजी की तरह अब हिब्रू भी कैसे प्रभावित हो रही है। वैसे मुझे बहुत निराशा हुई है। प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप केवल प्रशिक्षण और शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं तो प्रशिक्षण या निर्देश पर उच्च आवृत्ति वाले शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते? हमने कहा कि लामार का उपयोग अक्सर प्रशिक्षण या निर्देश देने के लिए किया जाता है। मसार निर्देश के लिए दूसरा शब्द है। यदा और यहां तक कि टोरा का उपयोग निर्देश और इस तरह की चीजों के लिए किया जाता है। अथ यदाह का अर्थ है जानना, विभिन्न प्रकार से सिखाना, सीखना। तो यह अजीब है कि वे इस शब्द का उपयोग करते हैं जो पूरे टेस्टामेंट में केवल 5 बार उपयोग किया गया है। अर्थों को इकट्ठा करने और लेने से भी सावधान रहें। ठीक है, आप कहते हैं कि एक मीठा था और फिर सीखने की इच्छा पैदा करते हैं और आप उन दोनों को एक साथ रखते हैं और आप कहते हैं ठीक है, हम इसे समर्पित करने जा रहे हैं और यदि आप करेंगे हमारा उपयोग करें, और आप उन सभी को एक साथ रखें। यह शब्दार्थ करने का एक बुरा तरीका है और आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए निराशाजनक अर्थों और चीजों के ढेर लगाने से सावधान रहें। तो आइए अब हनक को देखें। पुराने नियम में इसका उपयोग 5 बार किया गया है, और देखें कि क्या अन्य 4 बार हमें यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि बच्चे को प्रशिक्षित करने के तरीके में इस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है। तो नीतिवचन में हमारी कविता इमारतों के उपयोग को समर्पित करने और शुरू करने में उपयोग की जाने वाली हनक की 4 अन्य घटनाएं हैं। इसलिए समर्पित करने का अनुवाद किसी भवन के उपयोग को समर्पित करने या आरंभ करने के रूप में किया जाता है। और इमारतों का पहला उपयोग हुआ, इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन 20 श्लोक 5 में या मुझे क्षमा करें व्यवस्था विवरण अध्याय 20 श्लोक 5 एक घर का प्रारंभिक उपयोग या हनक एक घर का प्रारंभिक उपयोग एक है। एक आदमी के लिए युद्ध में न जाने का कारण ऐसा न हो कि कोई और पहले घर का उपयोग करता हो और उसे इसका उपयोग न करना पड़े। तो यह कहता है कि आपको एक मूल रूप से एक स्थगन यहाँ मिलता है क्योंकि आप कभी भी अपने घर में नहीं रहे हैं और इसलिए आपने घर का पहला उपयोग कभी नहीं किया है। यह एक नया घर है और इसलिए आपको मोहलत मिलती है। मुझे आपके लिए कविता पढ़ने दीजिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 श्लोक 5। तब हाकिम लोगों से बोलकर कहें, क्या कोई मनुष्य है जिसने नया घर बनाया हो और समर्पण न किया हो? एक शब्द है समर्पित। ESV किंग जेम्स NASB, NLT, NAB और NRSV सभी का अनुवाद समर्पित है या NIV का अनुवाद इसमें रहना शुरू होता है। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में यहाँ इस विशेष संदर्भ में अधिक सटीक है। NIV में रहना शुरू करें, इसमें रहें। वह अपने घर लौट जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और कोई दूसरा मनुष्य उसके घर में समर्पित होकर रहने लगे। इतना सरल समर्पण। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा है कि घर समर्पित नहीं किया गया है। आप घर समर्पित करते हैं, आप जानते हैं, आप पानी छिड़कते हैं या शैंपेन की बोतल गिराते हैं या ऐसा ही कुछ, वह बात नहीं है। ठीक है कि इसे 10 मिनट वाले किसी समारोह में समर्पित नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि इसमें रहने का पहला उपयोग, इसमें रहने वाले पहले व्यक्ति बने, इसमें रहना शुरू करें। इससे अधिक बात यह प्रतीत होती है कि वह लड़का कभी अपने घर में नहीं रहा। उसने अभी घर बनाया है, उसे अपने घर में रहने दो। आप जानते हैं, अन्यथा वह युद्ध में जाने वाला है। वह उस घर के बारे में सोच रहा होगा जो उसने बनाया है और उसके घर में कोई और है। इसलिए मुझे लगता है कि यह वहां का प्रारंभिक उपयोग है या जैसा कि NIV कहता है कि वहां रहना शुरू हुआ है। इसलिए व्यवस्था विवरण 20:05 में इसका उपयोग वहां 2 बार किया गया था। अब अन्य 2 संदर्भ वास्तव में मंदिर के समर्पण से आते हैं। सोलोमोनिक मंदिर 1 राजा 8:63, जहां सुलेमान ने मंदिर को समर्पित करते हुए सुलेमान की यह शानदार प्रार्थना की है। यह खूबसूरत है। और दूसरा इतिहास अध्याय 7:05 समानांतर संदर्भ 1 राजा 8:63 2 इतिहास 7:05 के समानांतर दोनों पहले उपयोग के समर्पण के आसपास के उत्सव के संदर्भ में सोलोमोनिक मंदिर का पहला उपयोग। दूसरे शब्दों में उन्होंने निर्माण पूरा कर लिया है और अब वे इसका जश्न मनाने जा रहे हैं। वे मंदिर को भगवान को समर्पित करने जा रहे हैं। सुलेमान यह शानदार प्रार्थना करता है जिसमें वह इस शब्द का उपयोग करता है। ध्यान दें कि यह एक सांस्कृतिक संदर्भ ज्ञान और पंथ है, एक प्रकार का मजेदार नृत्य है जिसे वे दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन मुझे पढ़ने दीजिए 1 राजा 8:63 2 इतिहास 7:05 में समानांतर है। 1 राजा 8:63 में सुलेमान ने प्रभु को शांति प्रसाद के रूप में 20,000 बैल और 120,000 भेड़े भेंट की। इसलिए राजा और इसराइल के सभी लोगों ने हनुक्का को समर्पित किया। हनुक्का या भगवान के घर का समर्पित या पहला उपयोग। और वहां इससे अधिक समर्पित करने का विचार प्रतीत होता है, लेकिन यह घर के पहले उपयोग के साथ भी जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरोनॉमी में घर के पहले उपयोग के समान वह व्यक्ति जिसने घर बनाया था। तो यहाँ दोनों मामलों में और एक व्यवस्था विवरण में भी तो आपके अन्य सभी चार मामले एक इमारत लेने और एक समर्पण सेवा द्वारा इसका पहला उपयोग शुरू करने या इसका पहला उपयोग शुरू करने से संबंधित हैं। तो फिर यहाँ मंदिर के साथ ध्यान दें, यह इसे अपवित्र से आगे बढ़ा रहा है, जो चट्टानों और पत्थर और देवदार से बनी एक इमारत है जो देवदार और सोने और चीजों से ढकी हुई है, और अब इसे पवित्र स्थान में लाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में इसकी शुरुआत की जा रही है, इसे समर्पित किया जा रहा है, और अब जब इसे समर्पित किया जा रहा है तो अचानक यह इस तरह की भूमिका निभाता है, हाँ, और उस समय अपने पहले प्रारंभिक उपयोग में चला जाता है। फिर यह भगवान के मंदिर के रूप में समर्पित है, कुछ ऐसा जो अब पवित्र है। तो यह अपवित्र से पवित्र के दायरे में चला गया है, और यह इस शब्द का प्रयोग ट्रेन या समर्पित या प्रारंभिक रूप से किया जाता है। अब यहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि हनुक्का के 8 संज्ञा उपयोग हैं। ठीक है, अब हनुक्का हनुक्का के लिए प्रयुक्त संज्ञा है, और इसलिए मैं यह देखने के लिए उन पर गौर करना चाहता हूँ कि क्या इससे कोई अर्थ निकलता है, क्योंकि हमारे पास निराशाजनक चीजें हैं। एक बच्चे को प्रशिक्षित करें, लेकिन फिर हमने इन सभी चीजों को समर्पित कर दिया है और मंदिर या किसी व्यक्ति के घर का उपयोग शुरू कर दिया है, और इसलिए अब आइए संज्ञा के कुछ उपयोगों पर नजर डालें। क्या हनुक्का के 8 संज्ञा उपयोग हैं? तो संख्या 7, 10, 11, 84 और 88 तंबू निर्माण में मोज़ेक वेदी। अब यह कहता है, और प्रमुखों ने वेदी हनुक्का के समर्पण के लिए भेंटे चढ़ाई। अब यह वेदी के समर्पण के संज्ञा रूप के बारे में बात कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह इसका पहला प्रयोग है, और इसलिए वे इसे समर्पित करने जा रहे हैं। इसका अर्थ है, इसे आप जानते हैं, अपवित्र से पवित्र में ले जाना जो पवित्र है, और वे इसके लिए एक समर्पण समारोह का उपयोग करते हैं या पहली बार पवित्र तरीके से इसका उपयोग करने जा रहे हैं। जिस दिन इसका अभिषेक किया गया, मशाच या मशियाच, आप लोग जानते होंगे कि अभिषिक्त व्यक्ति मसीहा मशियाच, यहाँ कुछ शब्द मशाच का अभिषेक किया गया था, और प्रमुखों ने वेदी के सामने अपनी भेंट अर्पित की थी, और यहोवा ने मूसा से कहा वे वेदी के समर्पण के लिथे प्रतिदिन एक एक मुख्य भेंट चढ़ाएं, और इसलिए वेदी उनका एक समारोह था, और यह स्पष्ट रूप से कितने दिनों तक चला, वहां 8 दिन या जो भी हो, और हर दिन बुजुर्गों में से एक आकर उस वेदी पर समर्पण करता था। तो ये संख्याएं हैं। यहां वेदी के आरंभिक उपयोग और उसे समर्पित करने के एक समारोह पर भी ध्यान दें। तो इस प्रकार का उत्सव है जहां हम अंतः भगवान के लिए इस वेदी का निर्माण करते हैं। अब हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। यह उत्सव है, और यह भी है, आप जानते हैं, हर दिन बुजुर्ग ऊपर जाते हैं और इसे समर्पित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं, माशियाच या माशियाच तरह की चीज। तो इसे पवित्र या अभिषिक्त किया जाता है। कुछ अन्य संज्ञा उपयोग, दूसरा इतिहास अध्याय 7 श्लोक 9, सोलोमोनिक मंदिर का समर्पण, वहां दोबारा इसका प्रयोग किया जाता है, और मुझे श्लोक उद्धृत करने दीजिए, दूसरा इतिहास अध्याय 7 श्लोक 9। और 8वें दिन उन्होंने बड़ी सभा की, क्योंकि उन्होंने वेदी का समर्पण 7 दिन तक किया था, तो इस वेदी समर्पण के 7 दिन थे, उन्होंने इसे बनाना समाप्त कर दिया। अब वे इसे समर्पित करने जा रहे हैं, इसे अपवित्र से पवित्र में ले जा रहे हैं, जो पवित्र है या कड़ाश या जो पवित्र है। और वे इस समर्पण समारोह का उपयोग ऐसा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए, इसे समर्पित करने के लिए और इस वेदी का पहला उपयोग शुरू करने के लिए करते हैं। और इसलिए यह भी वहां है। अब दूसरी बार इस संज्ञा का उपयोग किया गया है। हनुक्का दीवार के समर्पण के समय नहेमायाह 12:27 में है। क्या आपको याद है कि नहेमायाह ने निर्वासन के बाद यरूशलेम के चारों ओर दीवार का निर्माण किया था? और इसलिए नहेमायाह और उसके लोग उस दीवार का निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण के समय उन्होंने लेवियों और उनके सभी स्थानों की खोज की ताकि उन्हें समर्पण का जश्न मनाने के लिए यरूशलेम में लाया जा सके। फिर खुशी के साथ हमारा शब्द हनुक्का। ठीक है, तो वहां एक उत्सव है। आखिरकार उन्होंने दीवार पूरी कर दी और नहेमायाह को, आप जानते हैं, तलवार लाने और रात में काम करने और यह सब पागलपन भरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए अंततः वे दीवार समर्पित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दीवार बन गई है, हमने इसे बनाया, यह रहा। अब हम इस दीवार के शुरुआती उपयोग का जश्न मनाने जा रहे हैं। दीवार बनकर तैयार हो गई है और इसलिए यह खुशी, धन्यवाद और गायन के साथ समर्पित है। दीवार अब उपयोग के लिए तैयार है और इसलिए वे इसे उत्सव के साथ मनाते हैं। फिर प्रभु के समक्ष समर्पण, तो वह नहेमायाह 12:27 है। अब यहां स्तोत्र में एक ओवर है जो दिलचस्प है। अध्याय 30 के भजन के शीर्षक में यह डेविड का एक भजन समर्पण पर एक गीत हनुक्का मंदिर के समर्पण के बारे में कहा गया है। तो भजन 30:1 या भजन के शीर्षक में हमारे पास फिर से यह है। यह हनुक्का शब्द मंदिर के समर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब हमारे सभी शब्द, यह दिलचस्प है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। अपवित्र से पवित्र की ओर बढ़ना, वास्तव में अपवित्र से पवित्र तक के क्षेत्रों का परिवर्तन, इसके पहले उपयोग का जश्न मनाना और अब इसे बड़े उत्सव के साथ समर्पित करना। यह भी दिलचस्प है कि हनुक्का का पर्व, और अब यह 2023 है, हम हनुक्का के पर्व पर काम कर रहे हैं और यह उसी मूल से लिया गया है। आप इसे हनुक्का देख सकते हैं और यह समर्पण का पर्व है, हनुक्का का पर्व है। दिसंबर में जश्न मनाया जाता है, आमतौर पर हमारे क्रिसमस से ठीक पहले दूसरे मंदिर के समर्पण का जश्न मनाया जाता है। तो अब पहले मंदिर का उल्लेख कई बार किया गया। अब दूसरा मंदिर, जो उस समय निर्वासन के बाद एजरा और नहेमायाह और उस जैसी चीजों के बाद बनाया गया था, लेकिन फिर हेरोदेस ने फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन याद रखें कि क्या हुआ था कि 200 के दशक में सिकंदर महान के बाद सीरिया में रहने वाला एंटियोकस एपिफेंस आया था और उसने आकर मंदिर, यहूदी मंदिर, दूसरे मंदिर को अपवित्र कर दिया था। दूसरा मंदिर एंटियोकस एपिफेंस द्वारा अपवित्र हो जाता है और इसलिए मैकाबीज ऊपर उठते हैं और मैकाबीज फिर ऊपर जाते हैं और एंटियोकस एपिफेंस के जुए को उतार देते हैं और वे ऊपर जाते हैं और मंदिर को शुद्ध करते हैं। और फिर मोमबत्तियां हैं, रोशनी लंबे समय तक चलती है और इसलिए कभी कभी इसे रोशनी का पर्व कहा जाता है, क्योंकि तेल कई गुना बढ़ गया था और मंदिर शुद्ध हो गया था। तो इस मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था और अब इसे शुद्ध किया गया है और हनुक्का के इस पर्व के दौरान इसे फिर से समर्पित किया गया है। और इसलिए मैकाबीज ऊपर जाते हैं और वे दूसरे मंदिर को फिर से समर्पित करते हैं, जिसे सीरियाई लोगों एंटियोकस एपिफेंस द्वारा अपवित्र किया गया था, जो सिकंदर महान के वंशजों में से एक था। और हां, यह 167 ईसा पूर्व या ऐसा ही कुछ था। तो वैसे भी मैकाबीज ने एंटियोकस एपिफेन्स द्वारा इसे अपवित्र किया है। समर्पण का पर्व, वैसे समर्पण का पर्व हनुक्का जॉन की पुस्तक में आता है। वास्तव में इसका उल्लेख नए नियम के अध्याय 10 श्लोक 22 में किया गया है, और यीशु वास्तव में हनुक्का के पर्व पर यरूशलेम में शीतकाल बिताते हैं। तो यह जॉन अध्याय 10 श्लोक 22 में है। अब अरामाइक, अरामाइक हिब्रू की एक समानांतर भाषा है जो कुछ हद तक स्पेनिश और पुर्तगाली के समान है। मत करो, मुझे उस पर उद्धृत मत करो, लेकिन वे हैं, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? भाषाएं समान हैं। हमने इटली किया और जब हम बार्सिलोना में थे तो हमने सीखा, और यह सौभाग्य की बात है। और फिर हम इटली चले गए और यह बहुत अच्छा है। और इसलिए फिर हम, लेकिन आप देख सकते हैं कि शब्द इतालवी और स्पेनिश और सामान के बीच समानांतर हैं। तो यह अरामिक हिब्रू से काफी मिलता जुलता है कई मायनों में, और इसका उपयोग एजरा अध्याय 6 छंद 16 और 17 में दूसरे मंदिर में प्रारंभिक उपयोग या समर्पण का वर्णन करने के लिए किया गया है। और इसलिए नबुकदनेस्सर की 90 फुट की मूर्ति के समर्पण पर नबुकदनेस्सर ने अपनी 90 फुट की मूर्ति स्थापित की। दयालु वह एक विनम्र व्यक्ति था, मूल रूप से सोने में। और फिर डैनियल 3:2-3 उन्होंने उद्धृत किया कि यह अंतः उपयोग के लिए तैयार है, और वे अंतः आएंगे, और वे, आप जानते हैं, इस 90 फुट की मूर्ति या छवि या मूर्ति के प्रारंभिक उपयोग का उद्घाटन करेंगे और नबुकदनेस्सर को समर्पित करेंगे, और वे उसके लिए इस हनुक्का शब्द का उपयोग करते हैं। तो अरामी भाषा में इसका प्रयोग भी होता है और प्रयोग भी होता है। क्या आप देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है? दूसरे मंदिर का समर्पण, और फिर मूर्ति और उस जैसी चीजें, नहेमायाह के नीचे की दीवार का समर्पण और अन्य चीजें। तो सारांश समर्पित करने या आरंभ करने के लिए, सारांश में नीतिवचन 22:6 के अलावा 4 बार क्रिया के रूप में हनुक्का शब्द का उपयोग किया जाता है। एक बच्चे को प्रशिक्षित करें। ये चारों उत्सव या किसी इमारत के प्रारंभिक उपयोग या समर्पण के संदर्भ में हैं, और संज्ञा रूप का उपयोग दीवारों, वेदियों और नबुकदनेस्सर की मूर्ति या मूर्ति और मूर्ति के समर्पण के पहले उपयोग के लिए चीजों के लिए किया जाता है। और फिर किसी मंदिर, दूसरे मंदिर या यरूशलेम की दीवार और उस जैसी चीजों का समर्पण। और इसलिए यह हमें कुछ बताता है। 8 संज्ञा उपयोगों में भौतिक वस्तुओं, वेदियों, मंदिरों और दीवारों की सांस्कृतिक शुरुआत का संदर्भ है। बाइबल के अरामाइक में 4 उपयोग बिल्कुल उपयोग के समानांतर हैं, दूसरा मंदिर और नबुकदनेस्सर की मूर्ति। और इसलिए इस सारे डेटा का क्या मतलब है? यह स्पष्ट रूप से नीतिवचन अध्याय 22:6 उद्धरण के सामान्य शैक्षणिक पढ़ने के पक्ष में नहीं है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यहां कुछ सावधानियां बरतें। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस बारे में कैसा महसूस करता हूं। मैं एक तरह का हूं, मैं एक तरह से 80-20 तरह का हूं। मैं कुछ ऐसी बहस करने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे लगभग 80% यकीन है। 20% है जो मुझे बताता है कि यह अभी भी प्रशिक्षित है। जब भी आप देखते हैं तो सभी अनुवाद कहते हैं कि प्रशिक्षित हो जाओ, प्रशिक्षित हो जाओ, प्रशिक्षित हो जाओ। और आपको हिल्डेब्रांट जैसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको कुछ और बताता है, उससे सावधान रहें। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे यहां खुद को सावधान करना होगा। मुझे लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन आपने डेटा देखा है। मैंने आपके समक्ष डेटा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और इसलिए आप अपना मन बना सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। जब भी आप अनुवाद का काम करते हैं, और आप देखते हैं कि सभी अनुवाद एक तरफ हो रहे हैं और कोई और आपको कुछ और बता रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि इससे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो आप जानते हैं, मैं बस यही कहता हूं कि सावधानी बरतने की जरूरत है। नीतिवचनों में शैक्षणिक अभिप्राय अधिकांशतः है, लेकिन मंदिर के समर्पण की तरह सांस्कृतिक समर्पण नहीं। यह नीतिवचनों में नहीं पाया जाता। ठीक है, दरअसल मंदिर तो मंदिर है। क्या कहावतों में भी मंदिर का जिक्र है? सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका मंदिर। नीतिवचन की पुस्तक में इसका कभी उल्लेख तक नहीं किया गया है। मुझे आपको संस्कार और ज्ञान के मिश्रण के बारे में कुछ बताना चाहिए। तुम्हें वह करना ही होगा। तो तुम्हें सावधानी से नृत्य करना होगा। अब नीतिवचन 22:06 के बाहर अन्य उपयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ भी हैं। आपके पास दीवारें हैं, आपके पास वेदियां हैं, आपके पास मंदिर हैं, पहले और दूसरे मंदिर हैं, और आपके पास मूर्तियां और उस प्रकार की चीजें हैं। तो वे सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो फिर आपको श्रेणियों में कूदना होगा। जब आप इसे किसी बच्चे पर लागू करते हैं तो यह वास्तव में फिट नहीं बैठता है। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो वे निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इससे वहां कुछ विराम लग जाता है। 22:06 एक नर को प्रशिक्षित करता है, एक बच्चा। हम यह देखने जा रहे हैं कि वह वास्तव में बच्चा है या नहीं। अक्सर इसका अनुवाद बच्चा किया जाता है। तो कोलोकेट मायने रखता है और जो शब्द इसके चारों ओर जाते हैं वे मायने रखते हैं। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति के घर को समर्पित या प्रारंभिक उपयोग कर रहे होते हैं तो उन्हें युद्ध या मंदिर या वेदी या दीवार पर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यह एक दीवार का समर्पण है, एक मंदिर का समर्पण है। जो शब्द चीजों के साथ चलते हैं वे शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लड़का दौड़ता है, ठीक है, नल चलता है। क्या नल उसी तरह चल रहा है जैसे लड़का चल रहा है? खैर, वह लड़का अपने दोनों पैरों पर दौड़ रहा है, वह सड़क और सामान उड़ा रहा है। नल चलता है, पानी निकल रहा है। मेरी गाड़ी चलती है। क्या मेरी कार उसी तरह चल रही है जैसे नल चलता है? नल चलता है। मुझे वह पसंद नहीं है। कार चलती है। मुझे वह अच्छा लगता है। लड़का दौड़ता है। यह बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसलिए समिति अच्छे से चलती है। किसी समिति के अच्छे से चलने का क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए रंग शब्द का प्रयोग इसके आसपास मौजूद शब्दों के आधार पर विभिन्न अर्थों में किया जाता है। और इसलिए आपको वास्तव में सावधान रहना होगा जब आपके पास मंदिर, दीवार, वेदी, घर हो, इस तरह की निर्जीव वस्तुओं का उपयोग शब्द के साथ किया जा रहा हो, जबकि कहावतों में यह एक बच्चे को प्रशिक्षित करता है। अमुक-अमुक वह भिन्न हो सकता है और हो सकता है कि लड़का दौड़ता हो, लेकिन तब आप कहते हैं कि उसके पास दौड़ है। वह वहां भी बिल्कुल अलग है। तो वैसे भी शब्द शब्द बदलते हैं और संदर्भ अर्थ निर्धारित करता है, और यही हमें देखना है। दीक्षा सारांश को समर्पित करने के लिए जस्ट्रो बाइबल के बाद के कई आरामी उदाहरण प्रदान करता है, जहां महायाजक का उद्घाटन किया जाता है और 8वें दिन इसहाक, जिसे हनक द्वारा दीक्षा दी जाती है, को अनुबंध में शामिल किया जाता है। तो बाइबल के बाद के ये संदर्भ हनक को एक ही प्रकार की चीज के संदर्भ में उपयोग करते हैं। व्यक्ति का उद्घाटन, किसी व्यक्ति के समर्पण का पहला उपयोग, और आठवां दिन या उस जैसा कुछ भी। इसलिए बाइबल के बाद के कुछ उपयोग लोगों पर लागू होंगे जो तब उस चीज का समर्थन करेंगे जिसे हम यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे लिए वास्तव में दिलचस्प है वह है उत्पत्ति 14:14-24। उत्पत्ति 14:14-24 हमारे पास जो कुछ है उसके समान एक दिलचस्प समानता है, क्योंकि आपके पास हनक शब्द है लेकिन फिर आपके पास नार शब्द भी है, बच्चे। तो आपके पास ट्रेन शब्द है और फिर आपके पास बच्चा शब्द भी है जो उसी संदर्भ का उपयोग कर रहा है, नीति वचन में मिलने वाले संदर्भ से बहुत अलग संदर्भ। लेकिन जरा ये सुनिए, आपको कहानी याद है जब अब्राम ने सुना कि उसका कुटुंबी लूत बंदी बना लिया गया है। तो लूत नीचे है, वह सदोम और अमोरा में घूम रहा है। वहां एक चेडोर लाओमर है, उत्तर का राजा या जो भी हो, पूर्व की ओर आता है, नीचे आता है और लूत को छीन लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इब्राहिम को इसके बारे में पता चलता है और वह अपने लोगों, नौकरों और सामान को इकट्ठा कर लेता है और वे ऊपर जाते हैं और वे लड़ते हैं और लूत को उससे बचाते हैं। और फिर वापस लौटते समय आपको याद होगा कि उसकी मुलाकात मेलकीसेदेक या मेलकीसेदेक नाम के एक व्यक्ति से होती है और वह उसे अपने पास मौजूद हर चीज का दसवां हिस्सा देता है, इस तरह का सामान। सो जब अब्राम ने सुना कि उसका कुटुंबी लूत बंदी बना लिया गया है तो वह आगे बढ़ा। उनके प्रशिक्षित और यह हनीकाव उनके प्रशिक्षित लोग हैं। तो यह वह जगह है जहां यह कहा गया है, प्रशिक्षित पुरुष उनके घर में पैदा हुए, उनमें से 318 और जीत के बाद दैन तक पीछा करते हुए चले गए। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जो युवा पुरुष नारीम, वह हमारा नार शब्द है। ध्यान दें कि इन लोगों को प्रशिक्षित पुरुष कहा जाता है और इन्हें नारीम भी कहा जाता है। लेकिन आप कहने जा रहे हैं, बच्चे, ये लोग बच्चे नहीं हैं, वे बाहर लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी अभी लड़ाई जीती है, खाना खाया है और कुछ आदमी मेरे साथ चले गए। ये लोग नौसिखिया नहीं हैं, वे अनुभवी हैं, वे प्रशिक्षित हैं, वे योग्य लड़ाके हैं। उससे सावधान रहें, ठीक है, वे युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। और इसलिए जो हुआ वह यह है कि लोगों में से एक ने अनुवाद में रिटेनर्स शब्द का उपयोग किया है, रिटेनर्स। रिटेनर के साथ क्या आपके पास ये नौकर, दास या नौकर होंगे और फिर इन नौकरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें आपके घर में प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर उन्हें युद्ध में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसलिए वे ऐसा करेंगे, आपके कुछ नौकरों को बचाव और उस तरह की चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसलिए इन्हें अनुचर कहा जाएगा कि ये ऐसे सेवक हैं जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इस मामले में युद्ध और अन्य चीजों के लिए। और इसलिए यह दिलचस्प है, W.F. अल्ब्राइट ने कुछ अक्कादियन दस्तावेजों का हवाला दिया है, वे बेबीलोनियन दस्तावेज हैं जो अमरना युग से ठीक पहले के हैं। यह 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, मिस्र के अम्मोफिस की शिकायत के साथ कि तानक का रेवासा, तानक इसराइल में है, युद्ध के लिए सैनिकों को इकट्ठा करने के संदर्भ में उसने अपने अनुचर के नौकर को नहीं भेजा था। और एक अनुचर एक नौकर है जो सैन्य सेवा भी प्रदान करता है और उसे हनुहाना को उका कहा जाता है। तो यह मूल रूप से एक ही मूल है, लेकिन बेबीलोनियन या अक्कादियन में एक आदमी को बधाई देने के लिए, इस तरह के एक आदमी को, ठीक है। तो हमारे पास वास्तव में एक सजातीय भाषा में कुछ है जो प्रशिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति के समानांतर काम करता है। और जाहिर तौर पर अब एक बार जब वे प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वे सेवा के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि न केवल प्रशिक्षण में समानताएं हैं, बल्कि समर्पण या प्रारंभिक उपयोग में भी समानताएं हैं। दूसरे शब्दों में, वे प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं और अब एक तरह से ऐसा हो गया है किसी प्रकार का समारोह या जो कुछ भी उन्होंने मनाया। अब यह लड़का जाने के लिए तैयार है और इसलिए वह है, उसकी वह स्थिति है। उसे अब वह दर्जा प्राप्त है कि उसे प्रशिक्षित किया जा चुका है और अब उसे आधिकारिक तौर पर अनुमोदन की मुहर मिल गई है कि वह उन प्रशिक्षित लोगों में से एक है। ठीक है, तो निष्कर्ष में, संक्षेप में, हनुक शब्द प्रशिक्षण की प्रक्रिया पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता है जितना कि आरंभ किए गए व्यक्ति की परिणामी जिम्मेदारी और स्थिति पर है। तो इन लोगों को दीक्षा दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन फिर समर्पण के एक समारोह की तरह, जहां उन्हें जिम्मेदारी और स्थिति दी जाती है, जैसे कि वे उस प्रशिक्षण से गुजर चुके हों, बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता की सलाह से दूर ले जाया जाए, जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करते हुए अपनी स्थिति और जिम्मेदारी को और अधिक पहचानने के लिए प्रशिक्षण। दूसरे शब्दों में, आप प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं, आप पहले सिर्फ एक नौकर थे और अब आप जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं का प्रारंभिक उपयोग, और आप देख सकते हैं कि ये चीजें तब कैसे समानांतर थीं, अब उपयोग के लिए तैयार हैं का आरंभिक उपयोग, अब यह उपयोग के लिए तैयार है, समर्पित है, यह उपयोग के लिए तैयार है, यह उपयोग के लिए तैयार है, और इसलिए ऐसा लगता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब यह हमारी ट्रेन है, तो अब ऐसा लगता है कि यह पहले उपयोग का विचार है, जिम्मेदारी और स्थिति देना, एक परियोजना या भवन या कुछ भी पूरा करना, लेकिन फिर लोगों और चीजों के साथ। हम आगे नार शब्द पर नजर डालना चाहते हैं, जिसका अर्थ है बच्चा। और सवाल यह है कि क्या यह बच्चा है? क्या यहाँ छोटे बच्चों के पालन पोषण की बात की जा रही है या नार बड़ी है? क्या यह एक युवा व्यक्ति है? तो यह एक बुनियादी सवाल है। क्या यह बच्चा है? छोटे बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं, और हर कोई जानता है कि जीवन के पहले वर्ष बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए मैं बच्चों के पालन पोषण के खिलाफ बहस नहीं कर रहा हूं, और छोटे बच्चों का पालन पोषण बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या यह श्लोक छोटे बचपन के बच्चों का पालन पोषण करना सिखा रहा है या नार कोई बड़ा है? और हम आगे उस पर गौर करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने देखा है कि हनक या हनोक के पास प्रशिक्षण के विपरीत किसी चीज के प्रारंभिक उपयोग को समर्पित करने या एक समारोह के साथ जश्न मनाने का विचार है। अब हम नार शब्द पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका आमतौर पर अनुवाद बच्चा होता है। नार ने बच्चे का अनुवाद किया। जब मैं बच्चा शब्द कहता हूं, तो आप आमतौर पर एक छोटे बच्चे या एक युवा व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, एक छोटे बच्चे जैसी चीज। और सवाल यह है कि क्या यहां सचमुच एक छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही है या यह किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी दिवंगत किशोर के बारे में बात हो रही है। और इसलिए हम यह देखना चाहते हैं कि नीतिवचन की पुस्तक में यह नार कौन है। और इसलिए आइए शुरू करें। नीतिवचन 22:06 में अंग्रेजी अनुवाद एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करता है जिस तरह वह जाएगी उसे जाना चाहिए। किंग जेम्स इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं। ESV इसका अनुवाद करता है। NASV, ASV, RASV, TV और NIV और NLT और NAB बच्चों का उपयोग करते हैं ताकि एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करने के बजाय जिस तरह से उसे जाना चाहिए, वे कह सकते हैं कि बच्चों को उस तरह से प्रशिक्षित करें जिस तरह से उन्हें जाना चाहिए। और फिर आप उस लैंगिक समस्या से बचते हैं जो इतनी प्रचलित है। हम अपनी संस्कृति में बहुत विशिष्ट हैं और आज चल रही लैंगिक बहस को अपने बहुत ही संकीर्ण ढांचे से बाहर नहीं पढ़ सकते हैं। और इसलिए, लेकिन हिब्रू में यह एक वचन है, यह पुल्लिंग है, और यह मानते हुए कि यह आवश्यक रूप से बेटे या बेटी बनाम बेटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह बच्चों बच्चों दोनों के बारे में बात कर रहा है। और इसलिए यह लिंग समावेशी है, यह शब्द है। हालांकि तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह की चर्चा करते हैं। फिर नार कौन है? यह उद्धरण कौन है, बच्चे जिसका अनुवाद किया गया है? मैकडोनाल्ड ने उगारिटिक और हिब्रू उपयोगों में सैकड़ों उपयोगों के विश्लेषण पर आधारित एक अध्ययन में कहा, अब उगारिटिक और हिब्रू एक प्रकार की कनानी बोली थी, स्पष्ट रूप से एक कनानी बोली है। इसराइल के ठीक उत्तर में लेबनान है और लेबनान सीरिया क्षेत्र में यहाँ तट के पास रश शामरा नामक एक जगह है जहाँ उन्हें गोलियां मिली, हजारों गोलियां जिनसे उगारिटिक नामक भाषा विकसित हुई। यह हिब्रू की बहन भाषा है, वे कनानी बोलियां हैं। और सच कहूं तो मुझे उगारिटिक लेना पड़ा, और जब मैंने इसे जिम इसेनब्रॉन से लिया तो सच्चाई यह है कि मैंने उगारिटिक को ऐसे पढ़ा जैसे वह हिब्रू थी, और मैंने मूल रूप से पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग नकली बनाया, बस इसे ऐसे पढ़ा जैसे यह हिब्रू था, और अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया क्योंकि भाषाएं बहुत समान हैं। अब वे भिन्न हैं, कीलाकार आकृति, और मुझे इसका एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने नार शब्द के उगारिटिक उपयोग की जांच की और यह भी कि हिब्रू में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, और जर्नल ऑफ नियर ईस्टर्न स्टडीज में एक लेख में उन दोनों को एक साथ रखा। और इसलिए जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने जो निर्धारित किया था वह यह था कि उम्र शब्द का फोकस नहीं थी, तो उदाहरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नार का उपयोग अजन्मे बच्चे के लिए किया जाता है, अजन्मे बच्चे को नार कहा जाता है। और इसलिए न्यायाधीश अध्याय 13:5-12 में सैमसन को उसके जन्म से पहले ही नार कहा जाता है। जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे नार या इचबोड़ के जन्म का बच्चा कहा जाता है। और इसलिए तुम्हें याद है कि एली और वे पलिश्तियों से लड़ने के लिए संदूक ले गए थे, और फिर वे वापस आए और होथ और पीनहास मारे गए, और वे पत्नी के पास वापस आए और पत्नी के अभी एक बच्चा था और उसके पास यह बच्चा है, और वह उसे इचबोड़ कहती है। और इसलिए इस बच्चे के जन्म पर, एक शमूएल अध्याय 4:21 में बच्चे के जन्म पर उसे नार कहा जाता है, एक शिशु जो अभी भी दूध नहीं पिया गया है। और इसलिए शमूएल 1:22 में इस तरह है, 1:22 शमूएल, छोटे बच्चे शमूएल को छुड़ाया गया है और एली के पास वापस नहीं ले जाया गया है ताकि एली वहां तंबू के संदर्भ में बड़ा हो सके। और इसलिए और फिर भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे में एक 3 महीने का बच्चा, या मुझे खेद है, निर्गमन अध्याय 2:6 में मूसा को टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया गया था, टोकरी में रखे गए शिशु मूसा को नार कहा जाता है। और इसलिए वह उस समय 3 महीने का है। यह बहुत दिलचस्प है कि उत्पत्ति अध्याय 37:2 में जोसेफ को नार कहा गया है, लेकिन समस्या यह है कि जोसेफ 17 साल का है, तो वह 17 वर्ष का है और उत्पत्ति 37:2 में उसे नार कहा गया है। वह मूलतः उसी संस्कृति का व्यक्ति है। बाद में जोसेफ 30 साल का हो गया और 30 साल की उम्र में, बचपन से काफी आगे, उसे अभी भी उत्पत्ति अध्याय 41:12-46, उत्पत्ति 41:12-46 में नार कहा जाता है। इसलिए यह शब्द वास्तव में उम्र नहीं है, यह वास्तविक नहीं है शब्द का बिंदु। तो नीतिवचन 22:06 में इसका अनुवाद बालक किया जा रहा है। नर अक्सर वयस्क गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो नार को युद्ध के लिए बाहर जाने के रूप में वर्णित किया गया है। तो उदाहरण 1 शमूएल 17:33 और श्लोक 42 में मेरा मानना है कि यह डेविड और गोलियत की स्थिति है। डेविड को नार माना जाता है। वह गोलियत से लड़ने के लिए निकलता है। खैर जाहिर है वह कोई छोटा बच्चा नहीं है। ठीक है, अब उसके भाई उसके मामले पर कह रहे हैं, तुम्हें पता है तुम एक जवान लड़के हो, वापस जाओ और भेड़ों को देखो। लेकिन जब वह जवान है तब भी वह जवान ही है। ठीक है, वह ऐसा है इसलिए वह एक युवा है, एक युवा व्यक्ति है। वह अभी तक आधिकारिक योद्धा नहीं है, लेकिन वह एक युवा युवा व्यक्ति है और कोई बच्चा बच्चा 10 या 11 साल का नहीं है। न्यायाधीश अध्याय 6:12 और न्यायाधीश 8:20 नार युद्ध के लिए निकलता है। तो ये सिर्फ छोटे बच्चे नहीं हैं। सांस्कृतिक पुरोहिती कार्य भी शामिल हैं। और फिर इन सांस्कृतिक पुरोहिती कार्यों को करने के लिए आपको इतना बूढ़ा होना होगा और न्यायाधीश 18:3, 6 और 20 इन पुरोहिती कार्यों, एक विशेष जासूसी मिशन का वर्णन करने के लिए नार शब्द का उपयोग करते हैं। और यह एक दिलचस्प बात है। यहोशू जासूस भेज रहा है। मूसा ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। उन्होंने लाल सागर या रीड सागर को पार किया। वे पार करते हैं और रेगिस्तान और मन्ना चट्टानों के पानी से होकर गुजरते हैं। मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया ताकि वह वादा किए गए देश में न जा सके। वह उन्हें एदोम, मोआब और अम्मोन के आसपास ले गया और वह एमोरी, ओग, बाशान के राजा सीहोन के पीछे गया और एमोरी को निकाल ले गया। और फिर मूसा को अब मरना होगा और उसे मूसा से जोशुआ में परिवर्तित होना होगा। यहोशू मूसा का नार था। लेकिन हम यहाँ जो इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं वह यहोशू 6:22 है। जोशुआ अब तैयार हो गया है। उसे जॉर्डन नदी पार करनी है। और जब वह जॉर्डन नदी को पार करेगा तो वह जिस पहली जगह पर जाएगा वह जेरिको है। इसलिए वह 2 जासूस भेजता है और इन जासूसों को नारीम, पीएल या नार एसजी कहा जाता है। हमारा शब्द जिसका अनुवाद नीतिवचन 22:06 बालक में किया गया है। वह बच्चों को वहां नहीं भेजेंगे। वे यरीहो में वेश्या राहाब के घर जाते हैं। ये पुरुष हैं, ये नवयुवक हैं जिन्हें बाहर भेजा जाता है, विश्वसनीय नवयुवक हैं। और इसलिए वह इन दोनों नार को जेरिको की जासूसी करने के लिए भेजता है। जाहिर तौर पर वे छोटे बच्चे नहीं हैं, आप जानते हैं 10 या 12 या 8 साल के। तो एक विशेष जासूसी मिशन पर वह व्यक्ति जो अक्सर नार होता था किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का निजी परिचारक होता था। और इसलिए उदाहरण के लिए एक कुलपिता के पास एक नार होता है और एक भविष्यवक्ता के पास एक नार होता है। पुजारी के पास नार होता है, राजा के पास नार होता है। उत्पत्ति अध्याय 18:07, 2 राजा 5:1:27, 1 शमूएल 22:24 और 25, 2 शमूएल 9:09 और 2 शमूएल 13:17। इन सभी ने इब्राहीम की तरह ही सदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए नीचे जाने से पहले जब स्वर्गदूत उससे मिलने आए तो उसने अपने नार से भोजन तैयार करवाया और उसे अपना नार मिलता है जो खाना बनाने में माहिर है। तो मूल रूप से वह आदमी उन स्वर्गदूतों के लिए भोजन बनाता है जो उससे मिलने आते हैं। और सारा उस बात पर हंस पड़ती है। लेकिन वैसे भी उन संदर्भों में नार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का निजी परिचारक था। सोलोमोनिक मंदिर की देखरेख करने वाले सोलोमोन ने इन सभी लोगों को संगठित कर भव्य सोलोमोनिक मंदिर का निर्माण करवाया। और वह व्यक्ति जो कार्यबल का अधिकारी है, जो सुलेमान के लिए कार्यबल का अधिकारी है, उसे एक राजा 11:28 में नार कहा गया है। ईश शब्द का प्रयोग भी उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है। उसे एक ईश, एक आदमी माना जाता है और इसे लागू किया जाता है। नार को 2 Samuel 1:5-10-13 में लागू किया जाता है और वहां समानताएं होती हैं। तो ऐसे कई अन्य शब्द हैं जिनका उपयोग हिब्रू में किया जा सकता है। यदि आप छोटे बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो येलेड आज तक इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम है। आप कहते हैं येलेड, यह एक छोटा बच्चा है, बेन का बेटा होगा। और इसलिए कहावत है कि एक पिता अपने बेन से अपने बेटे से बात करता है जैसे एक पिता अपने बेटे से बात करता है। बेटे, मेरी आवाज सुनो, अपनी माँ की सीख सुनो। और इसलिए बेटे को बार बार संबोधित किया जा रहा है। नीतिवचन 1-9 आपके पास ये सभी निर्देशात्मक प्रकार की कहावतें हैं, इसलिए जहां पिता अपने पुत्र को संबोधित कर रहा है। बेटा कितने साल का है? क्या बेटा जवान है और सोचता है अच्छा देखेंगे, देखने आएंगे? नहीं, वह एक है, वह युवा किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था या देर किशोरावस्था है। एलीम एक और है, ओले ओलेल एक और है, योनिक एक और है, और टैफ छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए अन्य शर्तें भी हैं। यदि आप यह कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चे को प्रशिक्षित करें और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहाँ छोटे बच्चे के पालन पोषण पर चर्चा की जा रही है, इसके लिए बहुत सारे अन्य हिब्रू शब्द हैं, लेकिन ध्यान दें कि वे नार शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए हम यह जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इवाद जैसे शब्दों में नार भी घर पर है, जिसका अर्थ नौकर होता है। तो एक नौकर और एक नार, ये शब्द अक्सर समानांतर होते हैं या एक साथ चलते हैं। और यह जेकेन के बीच घर पर भी है, जो एक बुजुर्ग होगा। और इसलिए एक रुतबे वाला और बुजुर्ग व्यक्ति, और इसकी तुलना अक्सर एक बुजुर्ग और इस नार के बीच की जाती है। कोई उदाहरण नहीं है। नीतिवचन 22:6 में नीच जन्म के नार एक उद्धरण बच्चे का कोई उदाहरण नहीं है जिसका अनुवाद किया गया हो। ऐसे कोई नार नहीं है जिनके बारे में नीच जन्म के संदर्भ में बात की जाती है। तो आपके पास मूसा है, उदाहरण के लिए निर्गमन 2:06, आपके पास शमूएल है, उदाहरण के लिए महान लोगों में से एक, पुराना नियम यिर्मयाह 15:01, उदाहरण के लिए 1 Samuel 1:22 और छंद 24:25, सैमसन जो इसराइल के न्यायाधीशों में से एक है। ठीक है, न्यायियों 13:05, यूसुफ जो, और हम अब मिस्र में यूसुफ और उत्पत्ति अध्याय 32:37-2 और सुलेमान और एक राजा 3:07 के बारे में बात कर रहे हैं जब सुलेमान ने राज्य संभाला था। वास्तव में वह उस समय 41 वर्ष का था। और इसलिए लेकिन उसे नार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह उस परिप्रेक्ष्य में युवा है। अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और नारा को लेते हैं, जो कि नारा है, जो नार का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, और इसका मतलब है उच्च कुल में जन्मी महिला। जैसा कि मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि नार के पास ये उच्च जन्मजात स्थिति से भरपूर शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग भी, और उदाहरण के लिए उत्पत्ति 24:16 में रिबका को नारा कहा गया है। ठीक है, रिबका वह जो इसराइल के कुलपतियों में से एक इसहाक से शादी करेगी। उत्पत्ति 34:3 में दीना वह याकूब की बेटियों में से एक है। वह जैकब की बेटी है। अब उसके 12 भाई हैं। ठीक है। इस प्रकार इसराइल के 12 गोत्रों में याकूब के 12 पुत्र थे और इस प्रकार वे इसराइल के 12 गोत्र हैं, परंतु उसकी दीना नाम की एक बेटी थी और वह शकेम और उसके भाइयों में कुछ परेशानी में पड़ जाती है। ओ बॉय, बुरी कहानी है, लेकिन फिर भी भाई समस्या का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी दीना तो वह एक रुतबे वाली इंसान है। ठीक है, जैकब कुलपतियों में से एक है और दीना उसकी बेटी है। फिरौन की बेटी, उदाहरण के लिए निर्गमन 2:05 में फिरौन की बेटी को नाराह कहा गया है। तो फिरौन की बेटी स्पष्ट रूप से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यह दिलचस्प है कि रानी एस्तेर को नारा भी कहा जाता है। वह एक युवा महिला है और वह स्पष्ट रूप से राजा के लिए आकर्षक है। तो वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। ठीक है, लेकिन वह एक रुतबे वाली व्यक्ति है और वह रानी एस्तेर बनने जा रही है। इसलिए स्त्रीलिंग शब्दों में भी इस प्रकार की स्थिति संबंधी भावनाएं होती हैं। अक्सर नाराह उच्च स्तर के व्यक्ति का निजी परिचारक होता था, चाहे वह घरेलू हो या सैन्य। इसलिए उदाहरण के लिए इब्राहिम को नार मिला है और नार को भोजन तैयार करने के लिए बुलाया जाता है, उसके स्वर्गीय आगंतुकों के लिए एक विशेष भोजन, जैसा कि हमने पहले उत्पत्ति 18:07 और 8 में उल्लेख किया है। स्वर्गीय आगंतुक अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं, उसे एक बेटा होने वाला है और सारा खूब हंसती है, लेकिन नारा को उसके लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा गया है। तो यह मूल रूप से है, वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक कुलपिता जैसे व्यक्ति के परिचारक थे और फिर उसके पास एक नारा है जो भोजन या अन्य चीजें तैयार करने में विशेषज्ञ है। इब्राहिम का भरोसेमंद नार उसके साथ माउंट मोरिया तक जाता है। तो जब इब्राहिम से कहा गया कि वह अपने बेटे इसहाक को ले जाए और उसे मोरिया पर्वत पर बलिदान के रूप में चढ़ाए, तो इब्राहिम किसे साथ ले गया? वह एक नौकर रखता है और इस लड़के का नाम नार है। क्या वह बच्चा है? नहीं, नहीं, नहीं। वह एक भरोसेमंद निजी परिचारक है जो इब्राहिम और इसहाक के साथ जाता है जब वे 3 दिन उत्तर की ओर माउंट मोरिया की यात्रा करते हैं। तो नारा उत्पत्ति 22:3, यूसुफ एक नारा है जिसे पोतीपर के घराने पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या वह बच्चा है? अच्छा नहीं। पोतीफर की पत्नी उस पर प्रहार करना शुरू कर देती है और उसका कोट पकड़ लेती है और फिर उसे इसके लिए जेल में डाल दिया जाता है। वह स्पष्ट रूप से एक युवा व्यक्ति है। ठीक है, वह एक जवान आदमी है और पत्नी इस जवान आदमी के पीछे जा रही है जबकि उसका पति पोतीपर के रूप में अपना काम कर रहा है। तो वह उत्पत्ति 41:12 है। स्पष्टतः पोतीपर का अपना निजी सेवक है। उनका निजी परिचारक जोसेफ था और जोसेफ कोई छोटा बच्चा नहीं था। जोसेफ एक रुतबे वाला व्यक्ति था और एक तरह का युवा व्यक्ति था। यहोशू मूसा का निजी सेवक था। तो मूसा एक तरह से परमेश्वर का आदमी है। वह आदमी है। और फिर यहोशू एक तरह से उसका निजी सहायक या उसका सलाहकार जैसा दिखता है। आप कह सकते हैं कि वह मूसा के अधीन था, लेकिन वह मूसा और उस प्रकार की चीजों में शामिल होता था। निर्गमन 33:11 में यह उल्लेख है कि यहोशू एक नारा था। ठीक है, फिर कोई छोटा बच्चा नहीं। यह लड़का जोशुआ है। यहोशू बाहर जाकर देश की जासूसी करने वाला था। वह एक रिपोर्ट के साथ वापस आएगा और कहेगा, अरे यार, हम ऊपर जा सकते हैं और जमीन ले सकते हैं। वह अन्य 10 के खिलाफ जाने वाला है जो कहते हैं, नहीं नहीं, वहां दिग्गज हैं। यहोशू और कालेब जाने वाले हैं। जोशुआ को नारा कहा जाता है, और इसलिए फिर कोई बच्चा नहीं, कोई छोटा बच्चा नहीं। जब शाऊल अपने पिता के गधों को भगाने के लिए निकलता है तो उसके पास उसका नारा होता है। तो 1 शमूएल 9:22 में शाऊल के पिता ने उससे कहा, हे शाऊल, बाहर जाओ, तुम्हें पता है, गधों को ढूंढो, वे भटक गए हैं। और इसलिए शाऊल इन गधों का पीछा करने के लिए एक भरोसेमंद नार को अपने साथ ले जाता है। और फिर उस तरह से नार गिदोन, और यह दिलचस्प है, गिदोन के पास ये सभी आदमी हैं, वह इकट्ठा होता है, वह मिद्यान के विरुद्ध लड़ने जा रहा है। गिदोन मिद्यान के विरुद्ध, मिद्यान के पास 100,000 लोग और सामान हैं। गिदोन मौत से डर गया है। वह इन सभी लोगों को इकट्ठा करता है, 22,000 या उसके जैसा कुछ। वह इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है। भगवान कहते हैं, गिदोन, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं। तुम कहते हो, गिदोन कह रहा है, क्या तुम पागल हो? हमें और लोगों की जरूरत है, हमें कम चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि उन लोगों में से कोई डरता है तो उसे घर जाने दो, और जैसे उसकी आधी सेना गायब हो जाती है। और फिर वह बनाता है, वह उन्हें नीचे झरने और नदी के पास ले जाता है और कहता है, देखो वे कैसे पीते हैं। और फिर जो एक तरफा शराब पीते हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है। और खैर, उनके पास केवल 300 आदमी बचे थे, ठीक है, उसे हजारों के मुकाबले 300 मिले हैं। और इसलिए क्या होता है कि गिदोन मिद्यानियों, इस विशाल मिद्यानियों के शिविर की जासूसी करने के लिए नीचे जाता है। और इसलिए यहोशू और यह नारा, उसका विश्वसनीय सहायक, वह किसी अन्य योद्धा और प्रकार की चीज को नहीं चुनता है। वह अपने साथ जाने के लिए एक नार नामक युवक को चुनता है। वे नीचे जाते हैं और सुनते हैं कि हमला करने से पहले मिद्यानी शिविर में क्या चल रहा था। और तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने उसे हमारे हाथों में दे दिया है, और भगवान और गिदोन की तलवार दी है। अगले दिन वे वहां जाते हैं, अपना मोलोटोव कॉकटेल बनाते हैं और तलवारें लेकर उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वे आपस में लड़ने लगते हैं और भगवान गिदोन को जीत दिलाते हैं। परंतु गिदोन और उसका नारा ही वहां गए और उस रात उन मिद्यानियों की बात सुनी और उनकी जासूसी की। तो यह गिदोन की कहानी है और वहां के नार की भी।
Niveau personnel, avoir faim.
जोनाथन और उसका नार। अब ये एक दिलचस्प कहानी है। इसराइल में एक वाड़ी आज भी मौजूद है। यह घाटी है और जोनाथन और उसका हथियार ढोने वाला इस घाटी से नीचे चल रहे थे। वहां लगभग 250 फुट की चट्टान है, या मुझे यकीन नहीं है कि वास्तव में कितनी ऊंची है, लेकिन यह ऊंची है, और पलिश्ती शीर्ष पर हैं। तो इनमें से 20 फिलिस्ती लोग शीर्ष पर हैं। जोनाथन घाटी में घूम रहा है। खैर, आप इज़राइल में सीखते हैं कि आप घाटियों में नहीं चलते, ठीक है। मेरे दोस्त थे देव और मैं, और हम बेथलेहम के पूर्व में चल रहे थे और हम घाटी में थे। यह छोटा अरब बच्चा वहां ऊपर था और उसने हम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं, आप जानते हैं, 100-200 फीट। अचानक हम इस घाटी में चल रहे हैं, ट्रक चलाते हुए नीचे रेगिस्तान में जा रहे हैं। और अचानक बम ये चट्टानें टकराने लगती हैं और यह बच्चा वहां सिर झुकाकर हंसने लगता है। यहां हम तीन बड़े अमेरिकी हैं। हम उस तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वह शीर्ष पर है। हम असहाय हैं और यह बच्चा हम पर पत्थर फेंकने लगता है। और सच कहूं तो हम चट्टानों के पीछे छिप रहे थे और स्केटिंग कर रहे थे, वहां से निकल रहे थे क्योंकि बच्चा हमारे पास था। मेरा मतलब है, जब वे चट्टानें तुम्हारे सिर पर चोट करती हैं, तो तुम पागल हो जाते हो। और इसलिए मूल रूप से जोनाथन इस घाटी में अपने कवच वाहक के साथ चल रहा है। और योनातान कहता है, वह ऊपर देखता है, वहां 20 पलिश्ती हैं। और वह कहता है, अरे तुम जानते हो, यदि वे हमसे ऊपर आने को कहते हैं तो परमेश्वर हमें उनके हाथ में सौंप देगा। तो पलिश्ती कहते हैं, अरे कुछ यहूदी लड़के वहां हैं, हम इन लोगों के साथ कुछ मौजमस्ती करने जा रहे हैं, उन्हें यहां ऊपर चढ़ने दो। सबसे पहले जब आप उस चट्टान पर चढ़ते हैं, 200-250 फीट या जो भी हो, वह एक लंबी चढ़ाई होती है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप थक जाते हैं, और अब आपको 20 पलिश्तियों से लड़ना है जो इस चीज के शीर्ष पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अत कवचधारी उनके साथ जाता है। वे चट्टान पर चढ़ते हैं और बैम, जोनाथन और उसके हथियार ढोने वाले ने 20 पलिश्तियों को मार गिराया। ठीक है, तो इस कवचधारी को सिर्फ नार कहा जाता था। बच्चे, क्या वह बच्चा है? 10-12 साल का? नहीं, यह लड़का जोनाथन के साथ जा रहा है और लड़ता है, और पहले सैमुअल 14:14 में पलिश्तियों को मार गिराता है। इसलिए जोनाथन के पास उसका कवच वाहक है, उसका एक निजी सहायक है जो सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षित है। तो नीतिवचन के बाहर निष्कर्ष यह है कि इसका मतलब एक अनुभवहीन युवा बच्चा नहीं है। ठीक है, एक बच्चा इस शब्द का सर्वोत्तम अनुवाद नहीं है। नार, ठीक है, तो जैसे ही आप अंग्रेजी में बच्चा कहते हैं, आप बच्चे को 8 या 10 या 12 साल की उम्र में रखते हैं और एक बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं, 5 या 6 साल का छोटे बच्चे का पालन पोषण। और वैसे मैं छोटे बच्चों के पालन पोषण के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वे महत्वपूर्ण वर्ष हैं और आप, जैसा कि आप जानते हैं, असाधारण माता पिता बनना चाहते हैं और अपने बच्चे की जरूरतों पर ध्यान देना चाहते हैं जब वे छोटे बच्चे हों। निःसंदेह यह सच है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह श्लोक यही सिखा रहा है? ठीक है, तो यह नार शब्द का उपयोग करता है और हमने देखा है कि नार आप जानते हैं, इसका अनुवाद संभवतः बच्चा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अमेरिकी दिमाग में 5 से 10 वर्ष के बीच के एक युवा बच्चे को जन्म देता है। अब नार, जबकि बच्चा सबसे अच्छा अनुवाद नहीं है, गोलियत जैसे योद्धाओं से बिल्कुल अलग है। गोलियत को नार नहीं माना जाता है, गोलियत एक प्रमुख योद्धा है। दाऊद के अधीन योआब एक प्रमुख योद्धा है। अब्नेर और शाऊल का पुत्र भी प्रमुख योद्धा हैं। तो योआब, अब्नेर, गोलियत, वे अनुभवी योद्धा हैं। अब उन्हें नार नहीं कहा जाता। नार एक युवा व्यक्ति है जो अभी अभी उन श्रेणियों में आया है। वह लड़ने में सक्षम है, लेकिन वह एक अनुभवी योद्धा नहीं है। इसलिए आमतौर पर उम्र नहीं बल्कि स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। वह आमतौर पर रुतबे वाला एक युवा व्यक्ति होता है जो हाल ही में उस चीज में आया है। उगारिट में ध्यान स्थिति पर है न कि उम्र पर, जैसा कि मैकडोनाल्ड ने दिखाया है। ठीक है। अब यह हमारे देखने का नजरिया बदलने जा रहा है। यह दिलचस्प है कि यशायाह अध्याय 7 श्लोक 16 में मसीहा राजा को नार कहा गया है। देखो, एक लड़का या बच्चा जानता है कि बुराई को कैसे अस्वीकार करना है और अच्छे को चुनना है। तो वहाँ इसका उपयोग एक छोटे बच्चे के लिए सही ढंग से किया गया है, लेकिन यह इससे पहले कह रहा है कि वह जानता है कि बुराई को कैसे चुनना है और अच्छे को कैसे चुनना है। बच्चा वास्तव में एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसे नार शब्द का दर्जा दिया गया है क्योंकि वह मसीहा राजा बनने जा रहा है। तो नार स्थिति से जुड़ा है। अब हमने इसे नीतिवचन के बाहर देखा है और हमने देखा है कि नार के पास एक तरह के दिवंगत किशोर का विचार है जो अपने आप में आ रहा है। वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निजी परिचर है, एक कुलपिता या राजा या ऐसा कुछ भी। अब मैं नीतिवचनों के भीतर ही देखना चाहता हूँ और नार पर परिप्रेक्ष्य को एक प्रकार से संकीर्ण करना चाहता हूँ। इसका उपयोग नीतिवचन की पुस्तक में केवल 7 बार किया गया है और मैं यह देखना चाहता हूँ कि नीतिवचन में नार क्या है, ताकि इसे इस ज्ञान साहित्य के संदर्भ में और अधिक विशिष्ट बनाया जा सके। बुद्धि को सुमेर में एक राजा द्वारा प्रचारित किया गया था और उसके लिए लिखा गया था। मेसोपोटामिया में राजाओं ने बुद्धिमानी की। मुझे वास्तव में अल्स्टर द्वारा सुमेर की नीतिवचनों पर 2 खंड मिले हैं जो आप जानते हैं, पितृसत्ताओं और उस तरह की चीजों से बहुत पहले के हैं। ये कहावतें बहुत समय से प्रचलित हैं। प्राचीन विश्व में लोग कहावतों का प्रयोग करते थे और इसलिए अब हमारे पास अल्स्टर द्वारा रचित सुमेर की कहावतों के 2 खंड हैं। मेसोपोटामिया, हमें लैम्बर्ट का आयतन मिला है। यह मैं नहीं जानता, प्राचीन मेसोपोटामिया के ज्ञान साहित्य पर 500 या 600 पृष्ठ और चीजें हैं जिनमें नीतिवचन संग्रह हैं। उगारिट में भी उगारिट की कहावतों का संग्रह है। मिस्र अविश्वसनीय है। पट्टाहोटेप के निर्देशों वगैरह वगैरह के संग्रह में है। यह 2800 ईसा पूर्व तक जाता है, जिसे आप जानते हैं, इब्राहिम ने 2000 ईसा पूर्व को 2000 में पूरा किया। तो यह अब्राहम से 500, 600 या 800 साल पहले है। और उनके पास ये कहावतें हैं। इसलिए ऊपर और नीचे सभी संस्कृतियों में राजाओं द्वारा कहावतें प्रचारित और उपयोग की गईं। और इसलिए हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। हम इसे इज़राइल में देखते हैं। और इसलिए इज़राइल में हम पहले किंग्स अध्याय 4:31 पर जाएंगे। और सुलेमान और सुलेमान की बुद्धि के संदर्भ में यह यहाँ एक दिलचस्प बयान है। और यह कहता है, ठीक है, मैं श्लोक 31 से शुरू करूंगा। पहला राजा अध्याय 4:31। यह कहता है, इसलिए सुलेमान की बुद्धि पूर्व के सभी लोगों की सारी बुद्धि से बढ़कर थी। ध्यान दें कि यह कैसे सुलेमान की बुद्धि की तुलना पूर्व के लोगों से कर रहा है। और मुझे कैसे कहना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए कि वे सभी लोग विधर्मियों का एक समूह हैं। नहीं, यह सुलेमान की बुद्धि की तुलना पूर्व के लोगों और फिर मिस्र की सारी बुद्धि से कर रहा है, क्योंकि वह सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। अर्यात महल के पुत्र एतान, एजरेई, हेमान, काकल और दादर से भी अधिक बुद्धिमान था। उसकी प्रसिद्धि आसपास के सभी देशों में थी। उन्होंने 3000 नीतिवचन भी बोले। हमें केवल लगभग 375 नीतिवचन मिले हैं। उस व्यक्ति ने जो लिखा था उसका लगभग 10वां हिस्सा हमें मिल गया है और उसके गाने 1,05,000 थे। उन्होंने सोलोमन का एक गीत बाइबल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, लेकिन वास्तव में सुलेमान द्वारा लिखित स्तोत्रों में ही एक जोड़ा है। उन्होंने लेबनान के देवदार से लेकर जूफा तक के पेड़ों की बात की। लेकिन बात यहाँ यह है कि सुलेमान नीतिवचन बोल रहा है। और इसलिए जब आप नीतिवचन अध्याय एक से शुरुआत करते हैं तो यह इस तरह से शुरू होता है। सुलेमान की कहावतें, सुलेमान राजा है। तो ये कहावतें राजा द्वारा प्रचारित और प्रकाशित की जा रही हैं। सुलेमान दाऊद का पुत्र, इसराइल का राजा। और इस प्रकार यह नीतिवचन की पुस्तक में नीतिवचनों की पहचान करता है। नीतिवचन 10.1 सुलेमान की नीतिवचन। ठीक है। और इसलिए कहावतें राजा की ओर से आती हैं और उस तरह के शाही दरबार, दरबारी दरबारी प्रकार के संदर्भ में प्रस्तुत की गईं। अब इसमें शास्त्री भी शामिल हो गए, शास्त्री और जिन्हें हम दरबारी कहेंगे। ये वे लोग हैं जो उनके साथ घूमते थे। मुझे सावधान रहना होगा कि आप यह कैसे कहते हैं, वे लोग जो राजा के आसपास घूमते थे और इस प्रकार की चीजें करते थे। और इसलिए प्रशासक, उनके प्रशासक, हम उन्हें एक तरह से बुलाएंगे और मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन हम शायद उन्हें नौकरशाह कहेंगे। मैं इसे पसंद नहीं करना चाहता क्योंकि नौकरशाह अब इस देश को चला रहे हैं और वे इसे जमीन पर गिरा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग थे दरबारी, उस समय दरबार के आसपास लोग थे। और इसलिए ये लोग, ये संत या ये दरबारी राजा के आसपास थे और राजा को सलाह और ज्ञान और इस तरह की चीजें देते थे और व्यापार की देखभाल करते थे। और इसलिए नीतिवचन अध्याय 25 श्लोक 1 में यह कहा गया है कि हिजकियाह के लोगों ने सुलेमान की नीतिवचनों की नकल की। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा सोलोमोनिक संग्रह था। हिजकियाह के लोगों ने, फिर शास्त्री दरबारी प्रकार के लोगों ने उनकी नकल की। और यहीं से नीतिवचन अध्याय 25 से 29 आते हैं, हिजकियाह के ये शास्त्री। और वह हमें स्पष्ट रूप से बताता है, इन लोगों ने सुलेमान की नीतिवचनों की नकल की और यह नीतिवचन अध्याय 25 से 29 है। नीतिवचन 24-23 ये बुद्धिमानों की बातें हैं। और इसलिए आपको नीतिवचन अध्याय 22-12-21 मिल गया है। और इसलिए ये भी बुद्धिमानों की बातें हैं। और इसलिए ये ऋषि हैं जो इन कहावतों और चीजों को बनाते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक साथ रखते हैं। और वे अब हमारी बाइबल में हैं। तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि यह दरबार और राजा और उसके दरबार के आसपास है, उस प्रकार की चीज। नीतिवचन में किसी पुजारी या भविष्यवक्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत ही रोचक। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, ज्ञान साहित्य अब कोई श्रेणी नहीं है। और आप जानते हैं, वे इस बात को उड़ा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतिवचन की पुस्तक में कोई पुजारी नहीं है और न ही कोई भविष्यवक्ता है। पुजारी पूरे पुराने नियम में हैं, नीतिवचन में नहीं, पूरे पुराने नियम में। हारून एक याजक था, एलियेजर एक याजक था, वगैरह वगैरह। पुजारी, पुजारी, पुजारी पूरे पुराने नियम में, नीतिवचन में नहीं। पैगंबर, जब आपको भविष्यवक्ता मिलते हैं तो आपको शुरुआती समय के भविष्यवक्ता मिलते हैं और उनके माध्यम से भविष्यवक्ता मिलते हैं, विशेष रूप से राजाओं और राजाओं के बारे में। हम राजाओं और दरबार और अन्य चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, नाथन डेविड को डांट रहा है। और आपके पास यशायाह के समय के आसपास की भविष्यवक्ता हुल्दा है। यशायाह स्वयं एक भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह, यहेजकेल, दान वगैरह, पैगंबर और बाइबल में सभी चीजें, नीतिवचन की पुस्तक में शून्य। कहावतें, ज्ञान साहित्य और ज्ञान साहित्य अलग अलग हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि कहावतें अन्य साहित्यिक विधाओं और सामग्री से अलग हैं। और इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा। अब कहावतों में ना नीतिवचन अध्याय 23:01 में यहाँ यह दिलचस्प है कि नार को सलाह दी गई है, और ध्यान दें कि नीतिवचन 23:01 में यह किस प्रकार की सलाह है। यह कहता है, जब आप एक शासक के साथ भोजन करने बैठते हैं, तो दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति को यह यहाँ संबोधित कर रहा है वह उस प्रकार का व्यक्ति है जिससे वे कह रहे हैं, अरे जब आप राजा के साथ भोजन करने जाते हैं तो आप इसी तरह खाते हैं। तुम बस बकवास मत करो। कुछ निश्चित शिष्टाचार हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, और इसलिए जब आप शासक के साथ भोजन करने बैठें तो ध्यान से देखें कि आपके सामने क्या है। यदि आप अपनी भूख से त्रस्त हैं तो अपने गले पर चाकू रख लें। दूसरे शब्दों में, आप राजा के पास जा रहे हैं, राजा को यह स्मोर्गासबोर्ड बुफे जैसी चीज मिलने वाली है। यह सब भोजन होगा और आप जानते हैं, और आप इस चीज के अभ्यस्त नहीं हैं। अपने आप को ठूस ठूस कर मत भरो। अपने गले पर चाकू रखो। और इसलिए यहाँ दरबारियों को सलाह दी गई है। ठीक है, राजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, और इसलिए यह नार है। जब आप रूलर के साथ खाना खाने बैठें तो ध्यान से देखें कि आपके सामने क्या है। यदि आप अपनी भूख से त्रस्त हैं तो अपने गले पर चाकू रख लें। अब कहावतों में 7 प्रयोग होते हैं। नीतिवचन 1:4, 7:7, 20:11, 22:6 और 15:23 और 29:15। मैं अब इन्हें देखना चाहता हूँ और एक एक करके नीतिवचन नार शब्द के इन 7 प्रयोगों को पढ़ना चाहता हूँ। हम जो सवाल उठा रहे हैं वह यह है कि क्या यह 5 से 10-12 साल के एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, या क्या यह एक दिवंगत किशोर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो वयस्कता के कगार पर है। नीतिवचन अध्याय 1:4 को संबोधित किया गया है। नीतिवचन की पुस्तक सरल और युवाओं को संबोधित है, और युवा ईएसवी में जिस शब्द का अनुवाद युवा के रूप में किया गया है वह नार शब्द है। ठीक है, बुद्धिमान और समझदार। उम्र मुद्दा नहीं है बल्कि ज्ञान का स्तर और ज्ञान की उसकी आवश्यकता है। और मुझे बस वह पद पढ़ने दीजिए क्योंकि यह नीतिवचन की शुरुआत में एक आलोचनात्मक पद है। यह एक तरह से किताब को स्थापित करता है, और नीतिवचन की किताब में यह किताब का परिचय है। और यह कहता है, कहावतें क्यों लिखी जाती हैं? ज्ञान और शिक्षा को जानने के लिए, अंतर्दृष्टि के शब्दों को समझने के लिए, बुद्धिमान व्यवहार में, धार्मिकता में, न्याय में, समानता में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सरल लोगों को विवेक और युवा या युवाओं को ज्ञान और विवेक देने के लिए, जैसा कि यह है यहाँ ईएसवी में कहा गया है। वह शब्द युवा हमारा शब्द नार है। फिर जैसा कि यह छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, इसकी तुलना सरल से की जाती है, जो यह कहता है सरल को विवेक दें, और इसलिए सरल और युवाओं की तुलना वहाँ की जा रही है, और बुद्धिमानों को जाने दें सुने और उनकी शिक्षा को बढ़ाएं। ठीक है, तो नीतिवचन की पुस्तक स्वयं इस नार को, इस युवा व्यक्ति को उन्हें सलाह, ज्ञान और विवेक देने के लिए लिखी गई है। नीतिवचन अध्याय 7:7, मैंने सरल लोगों के बीच देखा है। सरल और नार के बीच फिर से समानता पर ध्यान दें। दूसरे शब्दों में, नार एक अनुभवहीन युवा व्यक्ति प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सलाह क्या है? मैंने साधारण लोगों में देखा है, मैंने युवाओं में देखा है। यह हमारा कार्यकाल है बेटा। क्या यह बच्चा है? और यह सरल और बच्चे के साथ एक ही चीज के समानांतर है। लेकिन यहाँ अध्याय 7 में पुत्र, पिता अपने बेटे को निषिद्ध महिला के बारे में चेतावनी देते हुए कह रहा है, यह महिला बाहर है, या वह कह रही है, अरे छोटे बेटे आओ, तुम्हें पता है, जवान आदमी यहाँ आ, मेरा मेरे पति का, उन्हें गए कई महीने हो गए, उसका बटुआ पैसों से भरा हुआ है, वह चला गया है और अमावस्या तक वापस नहीं आएगा, तो हम जानते हैं कि वह कब वापस आ रहा है। अरे तुम यहाँ क्यों नहीं आते यार, हम आज रात कुछ मौजमस्ती कर सकते हैं। ठीक है। और इसलिए महिला युवक को बहकाने की कोशिश कर रही है, और यह स्पष्ट रूप से कोई बच्चा नहीं है, है ना? जाहिर तौर पर यह कोई बच्चा नहीं है। पिता द्वारा उसे बहकाए जाने के बारे में चेतावनी देना, और तो वह 7 वर्ष का नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। नीतिवचन 20:11 नार को बताता है कि उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाएगा और इससे उसके दिल का पता चल जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब आप होते हैं तो एक बच्चा भी अपने कार्यों से जाना जाता है, युवा व्यक्ति। नीतिवचन 22:15 और 23:15 नारा की मूर्खता को दूर करने के लिए अनुशासन की छड़ी को लागू करने के बारे में बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, वह युवा है और अनुशासन की छड़ी मूर्खता को दूर कर देती है। अब क्या यह आपके बच्चों को उनके छोटे होने पर पिटाई करने के बारे में बात कर रहा है? मैं इसमें और इस पूरी पिटाई में नहीं पड़ना चाहता। अब कोई किसी को नहीं मारता, लेकिन फिर भी मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यह नार के बारे में बात कर रहा है, अनुशासन की छड़ी मूर्खता को दूर भगाती है। वैसे यह मत कहिए कि यह आवश्यक रूप से छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यह भी कहता है कि मूर्ख अनुशासन की छड़ी मूर्खता को दूर करती है। मूर्ख और मूर्ख एक वृद्ध व्यक्ति है। अध्याय 26:3। तो यहाँ उस व्यक्ति के लिए भी मूर्ख और छड़ी की आवश्यकता के बीच एक समानता है। उह अध्याय, नीतिवचन अध्याय 29:15, एक बच्चे को उसकी माँ का अपमान मानकर उसके पास छोड़ दिया गया। और हम उस कविता पर वापस आएंगे, लेकिन एक बच्चा, यह अब किसी भी उम्र का कोई भी बच्चा हो सकता है, जब उसे खुद पर छोड़ दिया जाता है तो वह अपमानजनक होता है। और इसलिए कि अब नीतिवचन 22:06 में नार का अक्सर अनुवाद किया जाता है, अक्सर बच्चे का अनुवाद किया जाता है, या इसे बच्चों में लिंग तटस्थ माना जाता है, ताकि वे उसके स्थान पर वे शब्द का उपयोग कर सकें। यह स्कैन शब्द के विपरीत है, जो कि पुराना है। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह अपने रास्ते से नहीं हटेगा। तो उम्र यहाँ एक कारक प्रतीत होती है। तो नीतिवचन 22:06 में उम्र एक कारक प्रतीत होती है। हालांकि क्या यह विरोधाभास एक बच्चे आप जानते हैं 5 से 10 या 12 के बीच है, या यह एक युवा देर से किशोरावस्था और बाद के जीवन के बीच है? ठीक है। और जब वह देर से किशोरावस्था में होता है, जब वह जवान होता है, जब वह जवान होता है, इसके विपरीत जब वह बूढ़ा होता है और युवा देर से किशोरावस्था में होता है, आप जानते हैं 16-17 साल की उम्र या उस रेखा के समान कुछ। और फिर जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो फिर यह प्रारंभिक बचपन के प्रशिक्षण के बारे में नहीं है। नार हमें बताता है कि ऐसा नहीं है। नीतिवचन की पुस्तक इस व्यक्ति को संबोधित है और यह बचपन के प्रारंभिक प्रशिक्षण के बारे में नहीं है। ऐतिहासिक पुस्तकों और नीतिवचनों में उपयोग के साथ साथ पुस्तक में संबोधित विषयों के आधार पर यह निश्चित रूप से देर से किशोरावस्था है। यौन प्रलोभन या उसके बारे में चेतावनी जैसी चीजें। नीतिवचन 10:05 में आर्थिक सलाह। राजनीतिक निर्देश अध्याय 25:6-7 में दिया गया है। सैन्य बुराई अध्याय 24:6 में दी गई है। सामाजिक अनुग्रह जैसा कि हम नीतिवचन 23:1-2 में कैसे खाना चाहिए के बारे में पढ़ते हैं। उस अध्याय में भोजन और कैसे खाना चाहिए और चीजों के बारे में बहुत कुछ है। लेकिन वैसे भी इस प्रकार की चीजें दरबारियों के लिए हैं, वे ऐसे लोगों के लिए हैं जो युवा हैं, जो दरबार की वयस्क दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वे छोटे बच्चे नहीं हैं, 10-5 साल के बच्चे हैं। तो यह बचपन में पढ़ने के बारे में नहीं है। अब मुझे माइकल फॉक्स नाम के एक व्यक्ति से माफी मांगनी है, जो महान ज्ञान शिक्षकों में से एक है। जब आप नीतिवचन की पुस्तक पर टिप्पणियों की बात करते हैं, तो मूल रूप से 2 शानदार हैं और वास्तव में कई अन्य हैं। एंकर बाइबल में माइकल फॉक्स के 2 खंड हैं। यह सर्वश्रेष्ठ में से एक है, यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं है। डॉक्टर ब्रूस वाल्टके ने नीतिवचन पर भी शानदार 2 खंड लिखे हैं। यह बिल्कुल शानदार है और उन दोनों की मैं अनुशंसा करूंगा। ये आपकी 2 सर्वश्रेष्ठ टिप्पणियां हैं। इंग्लैंड में एक महिला है, कैथरीन डेल, जो ज्ञान साहित्य, नीतिवचन और उस प्रकार की चीजों में बहुत अच्छा काम कर रही है। नट हैम, जो हमारे पास है, biblicallearning.org एक और है। हमें वास्तव में इनमें से बहुत कुछ मिल गया है, जिन चीजों के बारे में हम अभी नीतिवचन के बारे में बात कर रहे हैं। biblicallearning.org पर एक पूरी साइट है, नीतिवचन पर एक पूरा पृष्ठ है और हमारे पास नॉट हैम हैं, जो नीतिवचन की पुस्तक पर दुनिया के अग्रणी लोगों में से एक हैं और उन्होंने लौकिक वाक्यों में समूहों और उस जैसी चीजों पर कुछ अद्भुत काम किया है। तो फिर वे इसमें प्रमुख खिलाड़ी होंगे। जब मैंने मूल रूप से यह लेख लिखा था, तो माइकल फॉक्स ने मुझे धोखा दिया था। मैं नार शब्द का उपयोग करता हूं और मैं स्क्वायर या कैडेट शब्द का उपयोग करता हूं। और उन्होंने सही ढंग से मेरी आलोचना करते हुए कहा कि स्क्वायर शब्द का उपयोग करते हुए, जब आप स्क्वायर के बारे में सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप मध्य युग की उस चीज या कैडेट में वापस आ गए हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, आप जानते हैं, वेस्ट प्वाइंट या एनापोलिस या ऐसा कुछ, और ये कालानुक्रमिक शब्द हैं। दूसरे शब्दों में आप जानते हैं, मध्य युग के शब्द या आधुनिक शब्द ले रहे हैं और आप उन्हें वापस संस्कृति में पेश कर रहे हैं। तब कोई स्क्वायर नहीं थे, तब कोई कैडेट नहीं थे। वे शब्द आधुनिक शब्द हैं जिन्हें वापस प्रक्षेपित नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बताया कि मेरे लेख में जब मैंने स्क्वायर और कैडेट शब्दों का उपयोग किया था, तो वे कालानुक्रमिक शब्द थे जिन्हें पाठ में वापस प्रक्षेपित किया गया था, जो आपको नहीं करना चाहिए। और वह सही था, मैं गलत था और मैं क्षमा चाहता हूं। मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा था और मेरा कहना यह है कि नीतिवचन 22:6 छोटे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह 5-12 साल के बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह 15-किशोरावस्था के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि नीतिवचन की पूरी किताब बहुत ज्यादा है। और वैसे भी तो यह मेरा बुरा था और मुझे वहां एक कौवा खाने को मिला और मैं खाता हूं। माइकल फॉक्स सही हैं। जाहिर है वह नीतिवचन में दुनिया के अग्रणी लोगों में से एक है और मैं उसकी लीग में नहीं खेलता, अगर आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। इसलिए मैं कहता हूं, इसे हिल्डेब्रांड छोड़ दें। मैं शायद एक और शब्द आजमाना चाहता हूं, और यह वही है जिसे अल्ब्राइट ने तब इस्तेमाल किया था जब अकार्डियन के उस बयान में कहा गया था कि वह 14वीं-15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। उन्होंने रिटेनर शब्द का इस्तेमाल किया था। और अब आप क्या कहते हैं, अनुचर क्या है? आप कहते हैं यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दांतों और सामान में डालते हैं। तो आप कहते हैं हिल्डेब्रांट, आप उस अंग्रेजी शब्द रिटेनर का उपयोग करते हैं। वे अपने दांतों में सामान डालने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। रिटेनर अल्ब्राइट द्वारा इसका उपयोग करने का क्या मतलब है? यह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक नौकर है जो सैन्य कौशल में प्रशिक्षित है। वह एक नौकर था जिसे सैन्य कौशल में प्रशिक्षित किया गया था। और इसलिए या सामान्य तौर पर कौशल, वह एक नौकर था जो था, और वे उन्हें अनुचर कहते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं करता, हम उस शब्द का उपयोग भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यह शब्द दांतों के संदर्भ में बहुत अधिक बोझ लेकर आता है, अतः हमें उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उत्पत्ति 14:14 में इब्राहिम अपने 318 अनुचरों को लेता है, ये हमारे नहीं हैं, ये अनुचर, यदि आप चाहें, तो वे उसके सेवक हैं, वे उसके सेवक हैं जो युद्ध में प्रशिक्षित हैं और वे चेदोरलाओमर के पीछे जाते हैं और लूत को बचाते हैं। हाथ और फिर सदोम और अमोरा के साथ जो लोग छीन लिए गए थे। तो लेकिन ठीक है, आइए शब्द को हटा दें, लेकिन आइए केवल अवधारणा के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये नारीन जो बाहर जा रहे हैं, वे देर से आने वाले किशोर हैं जो नौकर हैं, जिनके पास विशिष्टताएं हैं। उन्हें युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है और वे लड़ने के लिए युवा पुरुषों के रूप में निकलते हैं। अब वे अनुभवी योद्धा नहीं हैं, वे गोलियत नहीं हैं, वे योआब या अबनेर स्तर के योद्धा नहीं हैं, वे अनुभवी योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे युवा योद्धा हैं जो बाहर जा रहे हैं, वयस्क दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और इसलिए यही मेरी बात है। और हालांकि उन्हें स्क्वायर या कैडेट न कहें, मेरा ऐसा करना गलत था और वह कालानुक्रमिक था। और इसलिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि वे छोटे बच्चे नहीं हैं, ये छोटे बच्चे नहीं हैं। नीतिवचन 22:06। तो अब हमने हनक को देखा है और हमने कहा है, आप जानते हैं, एक बच्चे को प्रशिक्षित करें। और हमने कहा, ठीक है, वास्तव में यह एक तरह से किसी इमारत, दीवार, मंदिर और उस प्रकार की चीजों के पहले उपयोग का जश्न मनाने या समर्पित करने जैसा है। तो यह किसी महान चीज के प्रथम उपयोग और समर्पण का उत्सव है। और तब हमें एहसास होता है कि नार अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नीतिवचन की किताब में नार एक दिवंगत किशोर है। और इसलिए जब आप कहते हैं कि एक बच्चे को प्रशिक्षित करें, तो आप एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप एक दिवंगत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसे एक युवा व्यक्ति कहेंगे, एक युवा व्यक्ति जो वयस्क होने की कगार पर है। और वहां वह परिवर्तन। तो यह है नार कौन है। अब हमारे पास यहां करने के लिए एक और अनुभाग है, और उसके तरीके के अनुसार इसका क्या मतलब है। अल्पीडार को इसका क्या मतलब है। ठीक है, और इसलिए उनके तरीके के अनुसार क्या है, इसका क्या मतलब है, और हम आगे इसका पता लगाएंगे। ठीक है, ट्रेन अप और उस ट्रेन अप के विकल्पों को देख लिया है, हनक और नार, बच्चे। और हमने कहा कि वास्तव में कोई बच्चा नहीं था। यह नीतिवचन की किताब में और पवित्र शास्त्र में अन्यत्र और उगारित में भी एक दिवंगत किशोर की तरह था। दार्को के अनुसार ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और उसका क्या मतलब है, और इसलिए आइए यहां उस पर एक नजर डालें। सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है, इस पर मूल रूप से 5 विचार हैं। ठीक है, इसलिए मैं सभी 5 दृष्टिकोणों को लूंगा और उनका अध्ययन करूंगा। नैतिक दृष्टिकोण, और मैककेन का नैतिक दृष्टिकोण यह है कि जीवन का एक सही तरीका है जिसके लिए युवा व्यक्ति को निर्देशित किया जाना चाहिए। तो यह वह रास्ता है जिसमें उसे जाना चाहिए और इसका मतलब यह होना चाहिए कि एक सही रास्ता है और इस तरह की चीज को निर्देशित किया जाना चाहिए। किंग जेम्स संस्करण ऐसा करता है। ईएसवी और एनआईवी और मुझे उद्धृत करना होगा और एनआईवी और एनएलटी मुझे खेद है और एनएलटी सही रास्ता बताता है ना? बेशक यह हिब्रू में नहीं है लेकिन वे इसे उस रास्ते से जाना चाहिए जिस तरह से उसे जाना चाहिए का अर्थ लगा रहे हैं। डॉग स्टीवर्ट ने देखा कि हिब्रू में कोई चाहिए नहीं है। हिब्रू में कोई चाहिए नहीं है, यह सिर्फ उसके तरीके से या उसके तरीके के अनुसार, उसके तरीके के अनुसार है, वहां कोई चाहिए नहीं है। तो इसे किंग जेम्स संस्करण में रखा जाना चाहिए और उसके बाद अधिकांश अनुवाद किए जाने चाहिए। अक्सर रास्ता नैतिक योग्यता से जुड़ा होता है। तो रास्ता डेरेक रास्ता ग्रीक में होडोस आमतौर पर एक नैतिक योग्यता के साथ होता है। आपको इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बताने के लिए भजन 1:06 होगा। ठीक है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। वहां नैतिक योग्यता धर्मी का मार्ग देखें, परंतु दुष्टों का मार्ग, और अब आपको वहां एक प्रकार का विरोधाभास मिला है, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, इसलिए धर्मी का मार्ग दुष्टों के मार्ग से भिन्न है। तो इस तरह की चीज दो तरीके और ज्ञान साहित्य वगैरह में दो तरीके एक बड़ा विषय है। नीतिवचन 9:06:12 नीतिवचन 2:12 और 20 जहां कुछ है रास्ता है और फिर यह धार्मिक या उस तरह की बात कहता है। इसमें एक नैतिक योग्यता है और इसलिए, लेकिन समस्या यह है कि नीतिवचन 22:06 में उसके तरीके के अनुसार कोई नैतिक योग्यता नहीं है। यह धर्मी का रास्ता या ईमानदार का रास्ता या उस तरह की बात नहीं कहता है। यह बस है, कोई नैतिक योग्यता नहीं है। तो चाहिए जोड़ा गया है। तो इस पूरी कहावत के लिए क्लिफोर्ड और उसके बाद स्टुअर्ट और जोनाथन एकेन द्वारा एक दिलचस्प वैकल्पिक पाठ है। चेतावनी नीतिवचन 22:06:1 है, आत्मलीन कभी न कहने वाले प्रकार के बच्चों के पालन पोषण के बारे में एक चेतावनी है जो वयस्कता तक चलेगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप बच्चे को कभी ना न कहकर उसे परेशान करते हैं तो बच्चा आत्मलीन आत्ममुग्ध हो जाएगा। और हम इसके बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान स्थिति में भी 50-वर्षीय बेटों के साथ जिन्होंने वास्तव में बुरे काम किए हैं और माता पिता अभी भी, आप जानते हैं, बच्चे के लिए बहाने बना रहे हैं। ठीक है, नीतिवचन 29:15 इसकी प्रतिध्वनि करता है और नीतिवचन 29:15 कहता है, डांट की छड़ी वा छड़ी और डांट से बुद्धि मिलती है, परंतु जो बच्चा अपने पास छोड़ दिया जाता है वह नर है, सो यह थोड़ी बात नहीं। जो बच्चा अपने पास छोड़ दिया जाए वह अपनी माता को लज्जित करता है। और इसलिए यह वहां है, नीतिवचन में एक बच्चे को उसके पास छोड़ने का उल्लेख है। और अब हमारी संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है और इसलिए क्लिफोर्ड स्टुअर्ट और एकेन इसे सामने लाते हैं और इससे पूरी चीज पलट जाती है। इसलिए एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करने के बजाय जिस तरह उसे जाना चाहिए, वे कहते हैं एक बच्चे को प्रशिक्षित करें और उसे अपने रास्ते पर जाने दें और फिर जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो तुम उसे वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो वे इसे इसी तरह लेते हैं। आप देखते हैं कि यह प्रशिक्षण के बजाय इसके अर्थ को उलट देता है, एक बच्चे को इस तरह से प्रशिक्षित करना कि उसे अच्छे तरीकों और अच्छे रास्ते पर जाना चाहिए, यह कह रहा है नहीं, यदि आप अपने हाथ हटा लेते हैं और आप कभी भी ना नहीं कहते हैं बच्चा और आप लगातार उसके आगे झुक जाते हैं तो यह बच्चे को बुरे रास्ते पर ले जाता है, जहां से जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह आत्मकेंद्रितता और आत्ममुग्ध व्यवहार के उस तरीके से नहीं हटेगा। नहीं, जिस तरह से उसे जाना चाहिए, जिस तरह से उसे जाना चाहिए चाहिए, यह हिब्रू में नहीं है। यह बस उसके अपने तरीके से है। उद्देश्यपूर्ण अस्पष्टता, यह उन अर्थों को उलट देता है जिन्हें अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और इसलिए यह दिलचस्प अस्पष्टता का एक मुद्दा उठाता है। क्या यह कहावत अस्पष्ट ढंग से, जानबूझकर अस्पष्ट ढंग से कुछ ऐसा कर रही है? कह रहे हैं एक ही समय में दोनों तरफ से पकड़ रहे हैं, पता नहीं। लेकिन यह सच है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चे को जाने देता है, कभी बच्चे को मना नहीं करता, उन्हें अपने रास्ते जाने देता है, हमेशा उनके आगे झुकता है और इस तरह की चीजें करता है जो बच्चे को बर्बाद कर देगा, यह सच है। लेकिन क्या यही है यह कहावत कह रही है? यही मेरा प्रश्न है। वह जो कह रहा है वह सच है। अपने हाल पर छोड़ दिया गया बच्चा वैसा ही बन जाता है। लेकिन क्या यह कहावत यही सिखा रही है? व्यावसायिक दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण, इसे हम व्यावसायिक दृष्टिकोण कहते हैं। पहला नैतिक दृष्टिकोण था और फिर इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण था, इसे जाना चाहिए, और फिर क्लिफोर्ड स्टुअर्ट एकेन का दृष्टिकोण था जिसने इसे उलट दिया, बस उसे अपने तरीके से जाने दिया। यह एक प्रकार का नैतिक पहलू है। तो यह नैतिक दृष्टिकोण है, सकारात्मक और नकारात्मक। हम कहते हैं कि नैतिक दृष्टिकोण सकारात्मक और नकारात्मक। दूसरा दृष्टिकोण व्यावसायिक दृष्टिकोण है, अर्थात उनके तरीके के अनुसार बच्चे को उसके भाग्य के लिए व्यावसायिक रूप से तैयार करना है और फिर वह चला जाएगा और जीवन भर यही करेगा। व्यावसायिक चयन को लेकर आधुनिक चिंता प्राचीन निकट पूर्व में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जहां बेटे को अक्सर अपने पिता के समान शिल्प में प्रशिक्षित किया जाता था। तो जब हम कॉलेज में प्रवेश करते हैं और आप पूछते हैं आप क्या करने जा रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, अब आप कॉलेज में हैं, आपको किस क्षेत्र में जाना है और किन चीजों के संदर्भ में जीवन के कुछ विकल्प चुनने होंगे। मेरी बेटी ने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर मुझे नहीं पता, हमारे साथ 2-3 साल बिताए और फिर कॉलेज के 2 या 3 साल बाद आखिरकार उसे पता चला और फिर वापस चली गई और वह एक नर्स प्रैक्टिशनर बन गई। लेकिन इसमें समय लगा, उसे व्यावसायिक चीजों को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हमारी संस्कृति में बहुत सारे व्यावसायिक अवसर हैं जो आज युवाओं के सामने हैं और यह बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है, और यदि आप किसी एक पर अपना मन बनाने में जल्दी नहीं हैं, तो मेरा मतलब है मैं मूल रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था और गणित, और अब मैं बाइबल पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं 40-50 साल बाद। तो आप एक चीज चुने, लेकिन हमारी संस्कृति में कई विकल्पों वाली व्यावसायिक चीज युवाओं के लिए एक निश्चित मात्रा में चिंता पैदा करती है। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। यीशु एक बढ़ी का पुत्र था और वे उसे बढ़ी का पुत्र कहते थे, मैथ्यू अध्याय 13:65, लेकिन मरकुस 6:03 में उसे भी कहा जाता है, यीशु स्वयं को बढ़ी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने अपने पिता के रास्ते का अनुसरण किया, जैसा कि उन दिनों अक्सर होता था। नीतिवचन व्यावसायिक विकल्प के बजाय धार्मिकता, ईमानदारी, ज्ञान, न्याय, परिश्रम, दुष्टता, आलस्य के मुद्दों में अधिक रुचि रखता है। यह चरित्र संबंधी मुद्दों, गुणों और चरित्र संबंधी मुद्दों में अधिक शामिल है। वैसे फ्रांसिस एसबरी सोसाइटी द्वारा 7 गुणों और बुराइयों पर एक दिलचस्प श्रृंखला है जो कुछ अद्भुत काम करती है, और वे अपने वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं। फ्रांसिस एसबरी सोसाइटी विलमोर, केंटुकी से निकलती है और वहाँ असबरी सेमिनरी है जिसमें कुछ वाकई महान लोग हैं, जिनमें क्रेग कीनर, डेविड बाउर और कई अन्य शामिल हैं। टेनेट जो इसके अध्यक्ष हैं, एक वास्तविक दूरदर्शी हैं। तो लेकिन फिर भी हाँ तो ठीक है। व्यक्तिगत योग्यता दृष्टिकोण प्रशिक्षण को बच्चे की अद्वितीय क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। और यही हम आज हैं। आप जानते हैं, आपको पता चलता है कि बच्चे को क्या पसंद है और आप उन रुचियों और चीजों को बढ़ाने और उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं। टॉय और ओस्टरली इसे भाग्य या नीति का एक तत्व मानते हैं, जिसके लिए बच्चे को उसी के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो उसके भाग्य में है। और फिर मैं इस बात में नहीं पड़ता कि नीति इस या उस चीज के लिए नियत है, और आपको कभी पता ही नहीं चलता। मुझे नहीं पता, यह कहना बहुत कठिन है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित किया गया था और यहाँ मैं बाइबल पढ़ा रहा हूँ। लेकिन तथ्य यह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि मुझे इस वेबसाइट और इस तरह की सभी चीजें करने की अनुमति देती है। तो भगवान हमारे अतीत में उन चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या मैंने भविष्य में इसके बारे में सोचा होगा? इसका कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी दिलिस्च उद्धरण का उपयोग करता है, मिस्रियों का रास्ता, यशाया 10:24 और उद्धरण आकाश में उकाब का रास्ता, उद्धरण उकाब का रास्ता आंदोलन के तरीके को बताने के लिए जो कि विशेषता है चील और इसलिए बच्चे का अनोखा तरीका। और इसलिए मुझे लगता है कि यह पता लगाने के लिए यह एक अच्छा शैक्षणिक सिद्धांत है कि बच्चे की रुचियां क्या हैं और वह किन चीजों में अच्छा है। मेरे कुछ बच्चे वास्तव में मैं कॉलेज में गणित में प्रमुख था और हमेशा यह स्वाभाविक था। और जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरे पास एक बहुत अच्छे गणित शिक्षक थे, मिस्टर बेसिल, जो हमारे बास्केटबॉल कोच भी थे, और हमने वास्तव में क्लिक किया। और इसलिए जब मैं कॉलेज गया और यह सब गणित करना शुरू किया तो मेरे लिए यह वास्तव में आसान हो गया। यह हमेशा सच नहीं था, यह आसान नहीं था, यह बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी। तो यहाँ मेरे और भी बच्चे हैं, मेरा मतलब है कि उन्हें गणित में धकेलना पागलपन होगा। मुझे लगता है कि गणित ब्रह्मांड की भाषा है और यह वह भाषा है जिसे भगवान ने अपने गणित से बनाया है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उसे गणित से नफरत है तो यह बहुत अच्छा काम नहीं करता है। और इसलिए उनकी योग्यता थी कंप्यूटर में जाना और फिर कभी गणित नहीं करना। विडंबना यह है कि पूरा कंप्यूटर गणित पर आधारित है, लेकिन मैं उस बिंदु पर जोर नहीं दूंगा। तो बच्चे का आचरण कैसा है? यह एक बुद्धिमान माता पिता है जो उस संबंध में अपने बच्चे का आचरण ढूंढता है। इसलिए मैं इस दृष्टिकोण व्यक्तिगत योग्यता के दृष्टिकोण को कमतर नहीं रखना चाहता। इसमें एक जगह है और ऐसा लगता है कि यह हिब्रू मिस्रवासियों के तरीके ईगल के तरीके से मेल खाता है और ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि डेलिट्स इसे वापस नार बच्चे से जोड़ रहा है और मुझे लगता है कि यह सचमुच एक अच्छी बात है, छोटे बच्चे के संदर्भ में नहीं बल्कि युवा होने और वयस्कता में प्रवेश करने पर उनकी रुचि के संदर्भ में। व्यक्तिगत मांगे, अब व्यक्तिगत मांगों का दृष्टिकोण, इसे मैं शास्त्रीय रूप से स्टुअर्ट क्लिफोर्ड दृष्टिकोण का नाम दूंगा कि कुछ अन्य लोग कहावतों को सिर के बल रख देते हैं। यदि आप बच्चे को उस तरीके से, उसके तरीके से, जिस तरह से वह चाहता है उसे प्रशिक्षित करने देते हैं तो आप बच्चे को तब नष्ट कर देंगे जब वह बूढ़ा हो जाएगा, आप उसे कभी वापस नहीं पा सकेंगे। वह इतना आत्मकेंद्रित और आत्ममुग्ध हो जाएगा कि आप उसे वापस नहीं पा सकेंगे। और हमारे पास इस प्रकार के बहुत से लोग राजनीति और अन्य स्थानों और चीजों में काम कर रहे हैं। और चाहिए, यह शब्द चाहिए स्टुअर्ट बुद्धिमानी से नोट करता है, पाठ में नहीं है। यह उसके तरीके के अनुसार है और स्टुअर्ट इसमें सही हैं। और यह नीतिवचन 19 या 29, 15 के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। बच्चा अपने आप पर छोड़ दिया गया, अपनी माँ का अपमान करता है। और वह यह है, तो फिर एक कहावत थी, जिस कहावत का वे सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं वह सच है। प्रश्न यह है कि क्या यह कहावत यही सिखाती है? वे सुझाव देते हैं कि माता पिता जो बच्चे को मूर्ख और आत्मकेंद्रित होकर अपने तरीके से चलने देते हैं, जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसे उसी गलत स्थिति में रखा जाएगा। और हम सभी ने बच्चों को इसी तरह देखा है। हालांकि नीतिवचन की पुस्तक में नार शब्द एक सीखने योग्य युवा व्यक्ति है। यह मूर्ख के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नार जहां मूर्ख की पीठ पर छड़ी मारी जाती है और मूर्ख को एक तरह से बंद कर दिया जाता है, नार सिखाने योग्य लगता है। और इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह बच्चे को प्रशिक्षित करना या बच्चे को समर्पित करना बच्चे के पहले उपयोग का जश्न मनाना है। और मैं यह कहकर उन्हें खारिज नहीं करना चाहता कि नहीं, यह नकारात्मक है। वह चला जाता है, वह मूर्खता में चला जाता है, क्योंकि यह वह तरीका नहीं है जिस तरह से आमतौर पर नीतिवचन और अन्य जगहों पर नार का उपयोग किया जाता है। यह रुतबे वाला व्यक्ति है और आमतौर पर ऐसा व्यक्ति है जो कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए शायद मैं वह विचार नहीं रखूंगा। द नार व्यू में एक नार आधारित दृष्टिकोण का सुझाव देना चाहता हूं कि उसके अपने रास्ते पर जाने का क्या मतलब है। और मैं एक नार या बाला आधारित दृष्टिकोण कहूंगा। इसके अनुसार एक नार के रूप में उनका तरीका, एक नार के रूप में उनकी स्थिति, हमने कहा कि यह उम्र नहीं थी बल्कि यह स्थिति और जिम्मेदारी थी कि नार एक रुतबे वाला व्यक्ति था। यह ऐसा था मानो यहोशू मूसा का दोस्त उसका दाहिना हाथ था। पहला, बच्चे नहीं, प्रारंभिक बचपन के बाल प्रशिक्षण का समर्थन करना। यह युवा व्यक्ति वयस्कता के कगार पर है और नीतिवचन 1:4-R में ज्ञान की इस पुस्तक में संबोधित किया जा रहा है। पुस्तक को एक नर को संबोधित किया गया है जिसके बारे में हमने कहा था कि वह देर से किशोर था और सरल और ज्ञान को विवेक देने के लिए था और युवाओं के लिए हम एक दिवंगत किशोर युवक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आप जानते हैं। पिता उसे इन सभी चीजों के बारे में चेतावनी दे रहा है, यौन और अन्यथा, आप जानते हैं कि वह चेतावनी दे रहा है। प्रशिक्षण भी मुद्दा नहीं है। जैसा कि नीतिवचन में या उत्पत्ति 14:24 में कहा गया है, जहां नार एक अनुमोदित सेनानी है, के प्रारंभिक उपयोग को मनाने या समर्पित करने का विचार अधिक है। वह अब्नेर या योआब जैसा योद्धा नहीं है, लेकिन वह इब्राहिम का निजी सहायक है। और इसी तरह एक कवच वाहक या एक निजी सहायक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और इस प्रकार वह एक तरह से रुतबे और सम्मान के उस स्थान पर पहुंच गया है। और इसलिए यह उत्पत्ति 14 में देखा गया है। नार आधारित दृष्टिकोण नीतिवचन न केवल मेरे बेटे को सलाह देता है जो परिवार के सदस्य होने पर स्पष्ट होता है, बल्कि नीतिवचन नौकरों के आचरण पर भी विचार देता है और नौकरों को राजा के सामने अपना आचरण कैसे रखना चाहिए और वे राजा के सामने कैसे भोजन करें और कैसा व्यवहार करें। तो इसे नार कहा जाएगा। बच्चे को अपने रास्ते पर जाना वह तरीका है जो इस पर आधारित है कि वह नार के रूप में कौन है और उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। तो यह उदाहरण होगा। उदाहरण के लिए नीतिवचन 17:2, एक नौकर जो बुद्धिमानी से व्यवहार करता है, एक नौकर जो बुद्धिमानी से व्यवहार करता है वह एक बेटे पर शासन करेगा जो शर्मनाक काम करता है और भाइयों में से एक के रूप में विरासत साझा करेगा। तो यहाँ आपके पास एक नौकर है और नीतिवचन की किताब एक ऐसे नौकर के बारे में बात करती है जो अच्छा काम करता है जबकि बेटे वास्तव में कहीं नहीं जा रहे हैं और बुरे हैं। नौकर को वास्तव में भाइयों में से एक के बजाय विरासत प्राप्त होगी और इसलिए नीतिवचन की पुस्तक इसे संबोधित करती है। अध्याय 29:19 केवल शब्दों से एक नौकर को अनुशासित नहीं किया जाता है क्योंकि वह समझता है फिर भी वह प्रतिक्रिया नहीं देता है। अब मैं यह सब एक साथ रखना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं हनोक शब्द से शुरुआत करना चाहता हूँ जिसका अनुवाद ट्रेन अप है और मुझे लगता है कि यह शायद बेहतर है। हमने उस शब्द के 5 उपयोगों को देखा, उनमें से सभी में मंदिर या एक वेदी का निर्माण और उत्सव का समर्पण या शुरुआत शामिल थी या किसी व्यक्ति का घर जो उसने सबसे पहले बनाया था उस घर का प्रारंभिक उपयोग या यरूशलेम की दीवार या नबूकदनेस्सर की मूर्ति। आप शायद इसके आरंभिक प्रयोग का जश्न मनाएं और समर्पित करें तो वे सीमा के शब्द होंगे और हम एक प्रकार के शैक्षणिक तरीके से प्रशिक्षित करने के बजाय प्रारंभिक उपयोग का जश्न मनाने या समर्पित करने के साथ काम करना चाहते हैं। यह एक स्थिति से दूसरे स्थिति धर्मनिरपेक्ष से अपवित्र क्षेत्र तक के आंदोलन के प्रारंभिक उपयोग का अधिक जश्न मनाता है और अब हम कह रहे हैं कि लड़का संभवत दूसरे क्षेत्र में जा रहा है यानी मर्दानगी और इसलिए बच्चे एक बच्चे को प्रशिक्षित करो। तो ट्रेन अप हम जानते हैं, आप जानते हैं, हमें ट्रेन अप शब्द से कुछ समस्याएं हैं। हमारा मानना है कि इसे लेने के बेहतर तरीके हैं प्रारंभिक उपयोग का जश्न मनाएं या समर्पित करें। बच्चा शब्द स्पष्ट रूप से नार है, छोटे बच्चों और कम उम्र में बच्चों के पालन पोषण की बात नहीं कर रहा है। अब जाहिर तौर पर यह माता पिता के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन के प्रारंभिक वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन यह एक समस्या को संबोधित कर रहा है। नार एक युवा व्यक्ति है जो वयस्कता के कगार पर है, वयस्क क्षेत्रों में जा रहा है। वह एक तरह का युवा है, वह युवा है लेकिन वह अभी भी है, उसके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए वह बुद्धि को महत्व देता है और उसे बुद्धि की आवश्यकता है। वह एक साधारण या साधारण मान ले कि अनुभवहीन के साथ समूहीकृत है, यह उसके लिए एक अच्छा शब्द है। वह अनुभवहीन है लेकिन वह है, उसने एक तरह से कदम बढ़ाया है और वह तैयार है, उन्होंने बेंचमार्क बना लिया है और इसलिए वह अब एक नार है लेकिन वह एक योद्धा नहीं है और वह स्वयं कुलपिता नहीं है लेकिन वह एक परिचारक है, इस तरह की बात है। तो वह एक युवा व्यक्ति है, शायद किशोरावस्था के अंत में, शायद अनुचर या दरबारी। मुझे उन शब्दों का उपयोग करने से नफरत है क्योंकि मेरी समस्या यह है कि माइकल फॉक्स ने स्क्वायर और कैडेट का उपयोग करके मुझे सही ढंग से सही किया है, इसलिए मैं रिटेनर और कोर्टियर जैसे नए शब्दों को स्थापित नहीं करना चाहता हूं और यह पता लगाना चाहता हूं कि वे भी कालानुक्रमिक हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा अपना सामान वापस आ गया है। लेकिन मैं कहूंगा कि नर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित स्तर का व्यक्ति प्रतीत होता है और इसलिए वह नर है, वह एक कवच वाहक है या वह एक निजी सहायक है जो इब्राहिम के पास आने पर स्वर्गदूतों के लिए भोजन तैयार करता है। तो वह तैयार लग रहा है। जो जासूस बाहर जाते हैं वे शायद तेजी से जासूसी करने में वाकई बहुत अच्छे होते हैं और युवा लोग, आप जानते हैं, इस तरह की फुर्तीले होते हैं और इसलिए नर, मैं कहना चाहता हूं कि वह देर से किशोर है, बच्चा नहीं और इसलिए मुझे लगता है कि अनुवाद बच्चे एक बच्चे को प्रशिक्षित करो, मुझे लगता है कि यह लोगों को बचपन के प्रशिक्षण के बारे में सोचने में गुमराह करता है, जबकि यह वह नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। जिस मार्ग से उसे जाना चाहिए वह नार के मार्ग के अनुसार है। दूसरे शब्दों में, एक युवा व्यक्ति के रूप में उसका वह कहाँ है, कैसे वह वयस्क दुनिया में प्रवेश कर रहा है, और उसके रास्ते के अनुसार एक बाज उड़ता है और एक निश्चित तरीके से एक निश्चित गति रखता है। तो इस नर का एक निश्चित तरीका है और उसे उसके तरीके के अनुसार उसी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो उनके तरीके के अनुसार मैं इन तीन चीजों को एक साथ रखना चाहता हूं और एक अनुवाद पेश करना चाहता हूं। यह वास्तव में एक तरह का अनाड़ी अनुवाद है। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे अनाड़ी अनुवाद से नफरत है, लेकिन अब मैं इसे स्वयं करने जा रहा हूं। और इसे सहज बनाने और सुंदर बनाने के लिए मेरी ओर से इस पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है। कहावतें सुंदर होनी चाहिए। कहावतें आकर्षक होनी चाहिए। समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। मेरा मतलब है, यह कुछ ऐसा आकर्षक होना चाहिए जिसे लोग याद रखें। और यह वैसा नहीं है, लेकिन मैं अर्थ जानने की कोशिश कर रहा हूं। पहले अर्थ पकड़ लें और फिर हम अगले चरण या दो या तीन या चार या पांच के बारे में चिंता करेंगे। हम इस तरह से शिल्प करने की चिंता करेंगे जो काव्यात्मक हो और जो कल्पनाशील हो और आधुनिक पाठक को आकर्षित करे, जैसा कि उन दिनों हुआ करता था। तो अंत में मैं जो अनुवाद लेकर आया हूं वह यहां है। मैं वास्तव में संतुष्ट नहीं हूं। यह स्पष्ट है कि अनुवाद अनाड़ी है, लेकिन यह बहुत सारे अर्थ पकड़ता है। मुझे लगता है कि हमने इस पर काम किया है। यह रहा। चिंता करेंगे जो काव्यात्मक हो और जो कल्पनाशील हो और आधुनिक पाठक को आकर्षित करे, जैसा कि उन दिनों हुआ करता था। तो अंत में मैं जो अनुवाद लेकर आया हूं वह यहां है। अपने रास्ते पर चल रहे एक युवा व्यक्ति के आरंभिक स्लैश का जश्न मनाएं। और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब उससे न हटेगा। मुझे इसे दोबारा पढ़ने दीजिए। अपने रास्ते पर चल रहे युवा व्यक्ति के आरंभिक स्लैश का जश्न मनाएं। और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब उससे न हटेगा। अब कुछ और टिप्पणियां। आधुनिक अनुप्रयोग। तो यह कविता एक ऐसे व्यक्ति से अधिक संबंधित है जिसकी उम्र बार मिटजवा या उसके जैसी किसी चीज से अधिक है। एक मार्कर जब एक लड़के का मर्दानगी में स्वागत किया जाता है। और इसलिए यह एक संस्कार है जिसमें वे युवा होते हैं और वे उस परिवर्तन पर होते हैं कि एक लड़का कब आदमी बनता है। मैंने अक्सर कहा था कि मेरी एक कक्षा में एक लड़का कब आदमी बनता है। एक लड़की पीछे से चिल्लाई, वे ऐसा कभी नहीं करते, और आप जानते हैं वैसे भी, लेकिन यह एक लड़का कब आदमी बनता है। यह वास्तव में एक अजीब तरह का क्षेत्र है। और यह मूल रूप से युवा व्यक्ति को उसकी स्थिति, वयस्कता में प्रवेश के अनुरूप सम्मान और जिम्मेदारियां देना होगा। इस व्यक्ति के समर्पण का प्रारंभिक उपयोग पहले वयस्कता में पहला कदम उठाना, वयस्कता में और यह और वह परिवर्तन करना और इसका जश्न मनाना और व्यक्ति को इसमें दीक्षित करना, व्यक्ति को समर्पित करना। तो एक समारोह होगा जो इस तरह का होगा। ठीक है, अब उसे इस रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह अगला कदम है और वह वयस्क होने की कगार पर है। अब वह अभी भी एक युवा व्यक्ति है, लेकिन उसने यह कदम सफलतापूर्वक उठाया है और इसलिए मैं इसे इसी तरह लूंगा। वैसे यह नीतिवचन की बाकी किताब के साथ फिट बैठता है, जो बिल्कुल उसी तरह के युवाओं को संबोधित है, अनुभवहीन लोगों को, उन्हें ज्ञान देता है के प्रारंभिक उपयोग या समर्पण के साथ फिट बैठता है। यह युवा व्यक्ति के साथ फिट बैठता है और यह उसके तरीके में फिट बैठता है। इन तीनों को एक सुसंगत संपूर्णता के रूप में एक साथ फिट करता है और माता पिता को वास्तव में अपने युवा लोगों के पक्ष में होने के महत्व का सुझाव देता है, क्योंकि वे वयस्कता में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बधाई देते हैं और उनकी चाल और देर से किशोरावस्था और चीजों का जश्न मनाते हैं और इसकी वास्तव में आवश्यकता है। और बहुत से बच्चे अपने माता पिता की अपनी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन सुनने के लिए मर गए हैं, जिनकी वे खोज कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, और वे जानते हैं कि उनके पीछे उनके माता पिता का समर्थन है। और यह भी याद रखें कि यह सब हो जाने के बाद एक कहावत कोई वादा नहीं है और हमें उसे निभाना ही है। एक कहावत क्या है? वह अगला प्रश्न है। यदि कहावत वादा नहीं है तो कहावत क्या है? और हमें उस पर एक अन्य वीडियो मिला है। इसे देखने के लिए, अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि हम अपने युवाओं का जश्न मना सकते हैं, क्योंकि वे वयस्कता में आगे बढ़ रहे हैं, और उनका जश्न मना सकते हैं और उन्हें उनके रास्ते पर प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि उनका मार्ग धर्मी के रास्ते पर हो सके। धन्यवाद। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांड हैं, जो नीतिवचन 22.6 पर अपनी शिक्षा देते हुए कहते हैं, एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह उसे करना चाहिए।